ప్రభు పద ప్రభు పద శిల ప్రభు పద విష్ణు పాద పరమహంసరి వ్రాజకాచార్య శ్రోతర షిష్య మధుభైచరణ అరవింద్ భక్తి వేదాంత స్వామి శిల ప్రభుపాదకి ఇస్కాన్ డిగ్రీ ఫౌండర్ ఆచార్య శిల ప్రభుపాదకి జయం విష్ణు పాద పరమహంసరి వ్రాజకాచార్య శ్రోతర షిష్య మద్భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ శిల ప్రభుపాదకి నామాచార్య శిల హరిదాస్ ఠాకూర్ కి ప్రేమ సి కహో జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృందకి ఉపస్థిత భక్త బృందకి జయ ఉపస్థిత భక్త బృందకి జయ ఉపస్థిత భక్త బృందకి జయ శ్రీ శ్రీ గురు గౌరాంగ కీ జయ దాయ గౌ ప్రేమానంది ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధ్రస్య జ్ఞానార్జన శలాకయ చక్షురుమిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః పదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీ రూపం సాగరజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాం సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ నమో విష్ణు పాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణే జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే కృష్ణ. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. आप सब समय पर आए. कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि असली सुख का मार्ग भगवत गीता जैसे ग्रंथों को पढ़कर मिल सकता है, क्योंकि भगवत गीता हमें अज्ञान से बाहर निकालती है और साथ ही साथ हमारा भगवान से क्या संबंध है उसको फिर से स्थापित करने के लिए हमें मदद करती है. तो अब जब कल हमने थोड़ा बहुत भगवद गीता शास्त्र प्रमाण इत्यादि का वर्णन सुन लिया, तो अब दूसरा विषय है कि क्या भगवान है इस जगत में. आप में से बहुत लोग मान सकते हैं कि भगवान है, बहुत लोग नहीं मानेंगे. कुछ लोग अपनी सुविधा के अनुसार मान लेते हैं और जब सुविधा ना हो तो नहीं मानते हैं. अर्थात उन्होंने भगवान के अस्तित्व को अपनी सुविधाओं से जोड़ दिया है कि अगर सुविधा है, अगर आवश्यकता है या फिर अगर लाभ है तो फिर हम मानेंगे कि भगवान है, और अगर हमें कोई लाभ नहीं है तो फिर भगवान नहीं है. तो इस तरह के बहुत सारे आर्गुमेंट्स लोग देते हैं. एक समय में एक प्रवचन के लिए एक साधु को बुलाया गया. एक गांव में लोगों ने प्रवचन रखा, साधु आए. साधु ने लोगों से पूछा, आप में से कितने लोग भगवान पर विश्वास करते हैं कि भगवान है? तो सबने हाथ ऊपर खड़ा किया कि हाँ, हम सब विश्वास करते हैं. तो साधु ने कहा, साधु उठे और उठकर जाने लगे. तो अरे, सबने कहा फिर प्रवचन क्या हुआ? तुमने कहा वैसे भी आप लोग सब भगवान पर विश्वास करते हैं, तो फिर मेरे प्रवचन की आवश्यकता क्या है? मैं तो प्रवचन करने आया था भगवान के विषय में, आप तो वैसे ही विश्वास करते हैं. तो चला गया. तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने उसको प्रार्थना की, नहीं नहीं, अगले दिन फिर से बुलाया. और अगले दिन लोगों को बोल दिया था, अब की बार वो प्रश्न पूछे तो हाथ नहीं उठाना. साधु आए बैठे, उन्होंने पूछा आप में से कितने लोग भगवान पर विश्वास करते हैं। किसी ने हाथ नहीं उठाया। साधु उठे और उठकर चल दिया। तो लोगों ने कहा आप क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि आप सब लोग नास्तिक हैं, आपको क्या भगवान की बात बताऊं मैं? कोई आप लोग विश्वास ही नहीं करते भगवान पर, तो क्या भगवान की चर्चा करेंगे, क्या कथा करेंगे? चले गए उठ के। तीसरे दिन फिर से ऑर्गेनाइजर्स पकड़ कर लेकर आए, नहीं आप प्रवचन कीजिए। और इस बार उन्होंने सबसे कहा था आधे लोग हाथ उठाना आधे लोग नहीं उठाना अगर प्रश्न पूछे साधु। तो साधु आए, साधु ने प्रश्न पूछा आप में से कितने लोग भगवान पर विश्वास करते हैं? तो आधे लोगों ने हाथ उठाया, आधों ने नहीं उठाया। साधु उठ के चलने लगे। लोगों ने बोला क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि जिन आधे लोगों को भगवान पर विश्वास है वो बाकी के लोगों को समझा दे, मेरी क्या आवश्यकता है। तो ये कहने के लिए है कि लोग अपनी सुविधा के अनुसार भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं। ऐसे कई बार होता है, जैसे ये व्यक्ति, ये जब कॉलेज में पढ़ते थे ऐसे एक मित्र थे किसी व्यक्ति के, तो बता रहे थे कि कॉलेज में पढ़ते थे तो बिल्कुल भगवान पर विश्वास नहीं, नास्तिक, मानते ही नहीं, नहीं भगवान भगवान कुछ नहीं होता, ये सब आप लोग दिखावा करते हो। तो जब इंटरव्यू का समय आया, क्योंकि जब कॉलेज में कॉलेज समाप्त होने लगता है तो इंटरव्यू होता है, तो जब इंटरव्यू का समय आया तो देखा है उसके मित्र ने कि उसने बहुत बड़ा टीका लगाया हुआ है माथे पर और टीका लगा के जा रहा है। तो उसने पूछा अरे मैंने तो सोचा था तुम बड़े नास्तिक हो, कभी भगवान को मानते नहीं, फिर ये टीका क्यों लगा है? बोले मैं तो अभी भी नास्तिक हूं, मैं तो मानता ही नहीं। तो फिर ये टीका, एक्चुअली जो इंटरव्यू ले रहा है ना वो भगवान का भक्त है, तो उसको इंप्रेस करने के लिए टीका लगा दिया। तो देखिए लोग विश्वास नहीं होता है भगवान पर, लेकिन किसी ना किसी तरह से, तो इसलिए बहुत कम लोग हैं जो विश्वास करते हैं और उनका विश्वास हिलता नहीं है। वो कभी हाथ उठाते हैं कभी हाथ नहीं उठाते, ऐसा नहीं होता। वो हमेशा हाथ उठाते कि यस भगवान पर विश्वास है, या वो भगवान को अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल नहीं करते। जैसे एक बार एक व्यक्ति अपने ऑफिस की ओपनिंग कर रहा था, तो ऑफिस की ओपनिंग करते समय वैसे वो नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था, लेकिन उसने पुजारी पंडित को बुलाया, यज्ञ करवा रहा है, पूजा करा रहा है, बैठकर पूजा कर रहा है। तो उसके एक मित्र ने बोला अरे तू तो यार बहुत बड़ा नास्तिक था, ये यज्ञ वगैरह ये भगवान की पूजा क्या बात है? तो बोला देखो मैं अभी अपना नया बिजनेस शुरू कर रहा हूं और बिजनेस में बहुत रिस्क होती है, तो मैंने सोचा कि सबको तो मैं संतुष्ट कर ही रहा हूं, तो चलो अगर भगवान कहीं है तो वो भी संतुष्ट हो जाए वहां पर, इसीलिए पूजा वूजा कर रहा हूं। तो लोग अपनी सुविधा के लिए भगवान को अपने हिसाब से मानते या नहीं मानते हैं। तो हम लोग कुछ आज प्रमाण देखेंगे कि कैसे भगवान हैं, क्योंकि लोग बाहर के जगत में वे लोग ये कहते हैं कि आप कहते हैं भगवान है, हम लोग जो भी विज्ञान में कहते हैं उसको हम लोग प्रूव करके दिखाते हैं प्रैक्टिकल प्रयोग के द्वारा, तो आप हमें दिखाइए अगर भगवान है तो हमारे सामने लाइए। सबसे पहले तो व्यक्ति को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या योग्यता है, भगवान को देखने के लिए योग्यता चाहिए ना, क्या योग्यता है तुम्हारी। जैसे हम यहां पर खड़े होकर कह दें कि देश में नरेंद्र मोदी है ही नहीं, अब हमारे कहने से क्या होगा? वो तो हैं और प्रधानमंत्री हैं भारत के, वो तो बने ही रहेंगे, लेकिन अगर हम यहां खड़े होकर कहेंगे तो कोई लाभ है? ऐसे लोग खड़े होकर कह देते भगवान है ही नहीं, है तो दिखाओ अभी हमारे सामने लाओ। अब आपको हम बोलें कि भारत के राष्ट्रपति अगर हैं उनको अभी हमारे सामने लाओ, नहीं तो हम नहीं मानते, तो आप मत मानो। भारत के राष्ट्रपति तो रहेंगे ही, उससे भारत के राष्ट्रपति को कुछ नहीं होने वाला। तो इसी तरह लोग ये विचार करते हैं कि अगर आप भगवान को मानते हैं तो हमारे सामने प्रकट कीजिए, तब हम भगवान को मानेंगे, नहीं तो भगवान को नहीं मानेंगे। तो ये सब धारणाएं हैं। इसके अलावा कभी कभी लोग कहते हैं कि देखिए समाज में कितना कष्ट है, लोग कष्ट पा रहे हैं, दुख में हैं, मर रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं। आप बोलते हो भगवान है, तो जब भूकंप आता है, छोटे छोटे बच्चे मारे जाते हैं, भगवान क्या करते हैं? क्या भगवान बच्चों को मरते हुए देखना चाहते हैं? इतने क्रूर है भगवान? तो कोई कहे नहीं नहीं भगवान क्रूर नहीं है। तो क्रूर नहीं है तो मतलब उनके अंदर शक्ति नहीं है, क्योंकि अगर शक्ति होती तो बचा लेते, भूकंप नहीं आने देते, या फिर आग नहीं लगने देते, सुनामी नहीं आने देते, युद्ध नहीं होता। आप तो कहते सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, तो फिर सुनामी भी भगवान की इच्छा से आता, तो भगवान रोक नहीं पाते, या तो उनके अंदर शक्ति नहीं है, और अगर शक्ति है और फिर भी नहीं रोक रहे हैं तो बड़े क्रूर हैं। क्रूर समझते हो आप लोग? क्रूर, बहुत ज्यादा क्रूर। तो इसीलिए लोग ऐसी धारणाओं को कहते हैं कि भगवान ऐसे चुनौती देते हैं। जैसे हमने पिछली बार जब हम वहां आए थे नीचे, तब एक बार एक क्लास में हमने एक कथा सुनाई थी कि एक बार एक लड़का ऐसे ही खड़ा हो गया, सबके सामने प्रवचन चल रहा था, उसने कहा ये सब बेकार की बात है, ये सब दिखावा है, मैं चुनौती देता हूं। घड़ी निकाल ली अपनी, 3 मिनट के अंदर अगर भगवान है कहीं पर भी तो मैं चुनौती देता हूं कि वो मुझे मार डालें, और अगर मैं 3 मिनट के अंदर मर जाऊं तो आप लोग विश्वास कर लेना कि भगवान है, और अगर नहीं मरूं तो भगवान नहीं है। सरल। अभी सब लोग हैरान हो गए, ये क्या पागल हो गया लड़का? तो समय तो चलने लगा, आधा मिनट, 1 मिनट, अब सब सबके हृदय में घबराहट हो रही थी, ये क्या कह दिया इसने, बचपन से हमने सुना है भगवान है और अब ये कह रहा है कि भगवान नहीं है, और अगर ये मर गया, क्योंकि हमें विश्वास है भगवान है तो मर जाएगा, अगर ये मर गया पुलिस इंक्वायरी होगी तो क्या बोलेंगे लोग? पूछेंगे किसने मारा? बोलेंगे भगवान ने मारा, पकड़े जाके भगवान को। और अगर नहीं मरा तो जो बचपन से सुना है कि भगवान है वो तो विश्वास ही जाएगा, तो क्या किया जाए? वैसे वो लड़का भी सोच रहा था क्या गलती कर दी मैंने, अगर सही में मर गया तो क्या होगा। खैर समय जा रहा था, धीरे धीरे लोग कुछ कुछ सोच रहे थे, और 3 मिनट हो गया, लड़के को कुछ भी नहीं हुआ, लड़का मरा नहीं। और तब लड़के ने कहा देखो मैंने कहा था ना कोई भगवान नहीं होते, चुनौती दी है तो मार दे, मारे नहीं मुझे, तो फिर इसका अर्थ है भगवान नहीं होते। अब सब लोग बातें करने लगे, अरे ये क्या हो गया, ये तो सही कह दिया इसने, बच्चे ये लड़का मरा नहीं, भगवान ने मारा नहीं, अब क्या कहें। तो एक व्यक्ति ने खड़े होकर एक प्रश्न किया कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या प्रश्न है? आपके पिता हैं? तो हमने कहा हमारे सबके पिता, ये कोई प्रश्न है? अरे पिता नहीं होंगे तो हम लोग कैसे जन्म लेंगे, तो क्या पागल जैसा प्रश्न पूछ रहा है। उसने कहा शांत रही, आपके पिता आपसे प्रेम करते हैं? बोले हाँ बहुत करते हैं। तो मुझे बताइए कि वो पिता जो आपसे प्रेम करते हैं केवल ये दिखाने के लिए कि वो हैं आपको मार डालेंगे? तो लोगों ने सोचा और कहा हमें क्यों मारेंगे भाई, केवल ये दिखाने के लिए कि वो हैं वो हमें नहीं मारेंगे, क्योंकि वो तो हमसे प्रेम करते हैं, हमारे पिता हैं, हमें क्यों मारेंगे? तो उसने कहा यही तो बात मैं बता रहा हूं कि भगवान हमारे पिता हैं, केवल ये दिखलाने के लिए कि वो हैं वो इस बालक को क्यों मारेंगे, ये तो कोई पिता नहीं कर सकता, फिर भगवान क्यों करेंगे? तो भगवान ने मारा नहीं, ये प्रमाण है कि भगवान है और वह हमसे प्रेम करते हैं। सब लोगों ने कहा हाँ ये बात सही है। तो ऐसे कई बार लोग चुनौतियां देते हैं, पाठशाला संस्थाओं में, शिक्षा स्थानों में समझाया जाता है कि भगवान नहीं है, ये सब बकवास की बात है, आप लोगों को कमजोर बनाया जा रहा है भगवान के नाम पर, स्ट्रांग बनो, भूल जाओ भगवान भगवान सब सब क्यों भूल जाओ, क्योंकि जब गलत काम करना हो तो भगवान को भूलना होता है है ना। गलत काम करते हुए कोई भगवान को याद नहीं कर सकता, कोई शराब पी रहा है बैठ कर तो थोड़ी याद करेगा हरे कृष्णा और अंदर गई हरे राम, कोई करता है आप में से कोई नहीं, क्योंकि भगवान का ध्यान आते ही सारे गलत काम गलत लगने लगे, अरे अरे क्या कर रहा हूं मैं। वैसे प्रभुपाद एक स्थान पर लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीते हुए भी भगवान का स्मरण करता है, ये सोचता है कि मैं गलत कर रहा हूं मुझे नहीं करना चाहिए, तो वो भी आगे चलकर एक दिन भक्त बनेगा, क्योंकि उसके मन में आ गया कि ये गलत है और भगवान की भक्ति के विरुद्ध है। तो खैर इसीलिए लोग भगवान को देखना नहीं चाहते, भगवान का स्मरण नहीं करना चाहते। जैसे हमने और एक कथा बताई थी कि एक बार एक टीचर वो अपने बच्चों को ये सिखलाना चाहती थी कि भगवान नहीं होते हैं, तो उसने एक बच्चे को बुलाकर कहा कि देखो ये ट्यूबलाइट दिखाई दे रही है, उसने कहा हाँ, बोला पंखा दिखाई दे रहा है हाँ, तो बाहर जाओ, दिन का समय था, बाहर जाके बालक आया, उसको पूछा सूर्य दिखाई दिया, बोला हाँ, भगवान दिखाई दिए, तो बोला नहीं भगवान तो नहीं दिखाई दिए, तो उसने कहा मैं समझाती हूं, बड़ा सरल है, ट्यूबलाइट दिखाई दी क्योंकि ट्यूबलाइट है, पंखा दिखाई दिया क्योंकि पंखा है, सूरज दिखाई दिया क्योंकि सूरज है, भगवान दिखाई नहीं दिए क्योंकि भगवान नहीं है, बड़ा सरल, समझ में आया, कहा समझ में आ गया, ठीक है वापस जाओ। तो वहां पर एक छोटी सी बच्ची थी, तो उसने वो फिर से आई, उसने टीचर से कहा टीचर टीचर मैं ये प्रश्न फिर से पूछना चाहती हूँ ये बच्चे से, तो टीचर और खुश होगी कि चलो अच्छा है, बच्चों को रिविजन हो जाएगा भगवान नहीं है, उसने बुलाया वापस आ, अब जानते लड़का गुस्से में आया, अभी अभी गया था फिर से बुलाया, तो उसको बच्ची ने पूछा ट्यूबलाइट दिख रही है, उसको बड़ा गुस्सा आया, अभी तो बताया था, खैर उसने हाथ दिख रही है, फैन दिख रहा, हाथ दिख रहा, बाहर जा बाहर जाके सूरज दिखा, उसको बहुत गुस्सा, सेम प्रश्न बार, उसने कहा हाँ दिखा सूरज, उसने कहा आखिरी दो प्रश्न, टीचर का चेहरा दिख रहा है, उसने कहा हाँ, पर टीचर का दिमाग दिख रहा है, उसने कहा नहीं, बोले मैं समझाती हूं तुम्हें, ट्यूबलाइट दिख रही है क्योंकि ट्यूबलाइट है, फैन दिख रहा है क्योंकि फैन है, सूर्य दिख रहा है क्योंकि सूर्य, टीचर का चेहरा दिख रहा है क्योंकि टीचर का चेहरा, और टीचर का दिमाग नहीं दिख रहा क्योंकि टीचर का दिमाग, बस। तो देखिए ऐसे लोग स्कूलों में पाठशाला में पढ़ाया जाता है कि भगवान नहीं है और ये सारी चीजें प्रकट की जाती हैं, इसलिए भगवद गीता जैसे ग्रंथों को पढ़कर मन में विश्वास होना चाहिए कि भगवान हैं और वे हमारे पिता हैं, वे हमसे प्रेम करते हैं और जो भी वो करते हैं हमारे लिए सही करते हैं, ये विश्वास हमें होना चाहिए। एक जरा कोई घड़ी देंगे मुझे थोड़ा समय, कोई आप लोग घड़ी पहनते हैं कि सब ने बंद कर दिया, आजकल मोबाइल रखते हैं सब लोग, ओके थैंक यू। So, इसलिए भगवद गीता जैसे ग्रंथों को पढ़कर हमें जान लेना चाहिए कि भगवान है, हमारा संबंध है उनके साथ, वो हमसे प्रेम करते हैं और सदैव हमारी रक्षा करते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है। तो हम लोग अब थोड़े भगवान के अस्तित्व के प्रमाणों को देखेंगे। लोग कहते हैं ना क्या प्रूफ है भगवान है या नहीं, ऐसे कुछ प्रमाण, ऐसे कुछ प्रूफ देखेंगे, कुछ चीजें देखेंगे जिससे पता चलेगा कि भगवान है, क्योंकि भगवान को अगर किसी ने देखा नहीं है ये बात सही है, तो ये बात भी है कि जो चीजें दिख रही हैं उससे हम भगवान को जान सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप इस बल्ब को देख रहे हो, लेकिन क्या आप इलेक्ट्रिसिटी को देख रहे हो, करंट को देख रहे हो? लेकिन क्या आप बल्ब के द्वारा जान नहीं सकते कि करंट है? जैसे ही लाइट बंद हो जाती है हम लोग क्या कहते हैं, करंट चला गया। तो मतलब लाइट को देखकर, पंखे को देखकर हमें करंट दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें पता चलता करंट है। क्यों? क्योंकि पंखा चल रहा है तो करंट से ही चलेगा, कहीं ना कहीं से करंट दिया जा रहा है, उसको इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, नहीं तो हो नहीं सकता। इसी तरह कुछ चीजों को देखकर भगवान के होने का अनुमान लगाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ये स्क्रीन काफी नीचे है, आप लोगों को ठीक दिख रहा है या वहां बैठे हुए लोगों को तकलीफ तो नहीं? ठीक है सबके लिए, कुर्सी पर बैठे हुए लोगों के लिए भी, पीछे जो बैठे हैं सबके लिए ठीक है? ओके। तो हम बता रहे थे कि कुछ चीजों को, तो देखिए अपने आसपास जब हम नजर घुमाते हैं तो हमें बहुत सुंदर सुंदर फूल नजर आते हैं। तो फूलों को आप देखिए कितने अच्छे कलर उस पे किए होते हैं, अलग अलग तरह के रंग बिरंगे फूल होते हैं, अलग अलग उनके शेप होते हैं। या फिर बहुत पक्षियों को देखिए, इतने सुंदर सुंदर पक्षी कभी कभी देखने को मिलते हैं कि व्यक्ति आश्चर्यचकित रह जाता है कि कौन है ये, किसने बनाया है। अब इस पक्षी को देखिए कितने रंग हैं, इसकी आंखें देखिए। तो यहां पर कई अलग अलग रंग होते हैं। वैसे कुछ पक्षी होते हैं जिनमें कोई सौंदर्य नहीं होता, जैसे कौआ है ना, काला होता है। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ जब हम अफ्रीका में गए तो अफ्रीकन्स जो हैं वो ज्यादातर काले होते हैं, लेकिन वहां कौआ सफेद होता है। यस, हमने देखा वहां पर। आप में से कोई गए हैं कभी अफ्रीका? वहां कौआ उसका मतलब थोड़ा काला होता है और यहां पूरा ऐसे नीचे से और ऊपर से पूरा सफेद होता है, बीच में से ब्लैक एंड व्हाइट। हमने जब जीवन में पहली बार कौआ सफेद देख रहे हैं, आज तक सुना नहीं था। तो वहां वो व्यक्ति हमें बता रहे थे कि आप ध्यान रखना, पिछली बार एक व्यक्ति प्रवचन करने आए थे तो प्रवचन करते हुए वो बता रहे थे सुंदरता ये वो, और उनका देखो कौआ वो तो काला होता है। तो लोगों ने बोला प्रभु जी यहां कौआ काला नहीं होता है। तो ऐसे ये सुंदर सुंदर चित्र हैं। या फिर ऐसे नेचर देखिए आप, प्रकृति कितना सुंदर लगता है। व्यक्ति जब अपने घर में रहते रहते थक जाता है, उस घर को जिसने खुद बनाया है, तो वो प्रकृति के पास जाना चाहता है, कहीं समुद्र का किनारा, कहीं नदी, कहीं जंगल, नेचुरल, और कितना सुंदर लगता है देखना। तो हमें जानना चाहिए कि ये सब बनाने के लिए एक चित्रकार लगता है। अगर हम केवल पेंटिंग बनाना चाहें तो एक चित्रकार, एक पेंटर लगेगा। तो ओरिजिनल क्या अपने आप आया होगा? ओरिजिनल भी तो किसी ने बनाया होगा। तो कौन है इसका चित्रकार जिसने इतने अच्छे अच्छे रंग भर दिए हैं, इतने अच्छी अच्छी डिजाइन बनाए हैं? हमें बनाने के लिए कोई व्यक्ति लगता है, लेकिन समाज जो पूरी दुनिया में ऐसे ही बन गए हैं, कौन चित्रकार है ये हमें जानना चाहिए। तो पहला प्रमाण कि भगवान है, हम अपने आसपास प्रकृति को देखकर लगा सकते हैं कि इतनी सुंदर चित्रकारी के पीछे कोई तो चित्रकार होना चाहिए। दूसरा प्रमाण, जब कुछ चीजें बनाई जाती हैं, जैसे यहां पर हमने कुछ चीजों को दिखाया है आपको, तो इन चीजों को किसी ने बनाया या ये अपने आप प्रकट हो गई? अच्छा, तो पहले चित्र में आप देखिए टेलीस्कोप है, कोई जानते किसने बनाया? गैलीलियो। बहुत अच्छा, आप लोगों का ज्ञान बड़ा तीव्र है। दूसरे चित्र में टेलीफोन है, किसने बनाया? बहुत बढ़िया, आप लोग तो एकदम, आपको फुल मार्क्स आते होंगे लगता है, या फिर आपके नेवी के एग्जाम में पूछा जाता है क्या? तीसरा बल्ब, एडिसन, कितनी बार बनाया था जानते हैं कोई? 3520 बार फेल हो गए थे, उसके बाद बल्ब किसने बनाया? जेम्स बॉन्ड. हाँ, जेम्स वॉट. ओके, राइट राइट, सही है सही है, जेम्स वॉट. तो ये जो सारी चीजें हैं जो बनी हैं, इनको बनाने के लिए कोई व्यक्ति लगता है, अपने आप नहीं बनती हैं. तो इसी तरह अगर हम अपने आसपास या अंतरिक्ष में देखें, अंतरिक्ष विज्ञान में, तो अगर हमें अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट छोड़ना होता है, तो हमने जो पहले बताया कुछ चीजें बनाने को, तो जो पूरा जगत बना है जिसमें इतने सारे पेड़ हैं, पर्वत है, नदियां हैं, पेड़ पहाड़ पर्वत नदी, कितनी सारी चीजें हैं. तो जब कोई एक छोटी सी चीज बनाने के पीछे कोई बनाने वाला होता है, तो इतनी बड़ी चीजों के पीछे कोई नहीं है, अपने आप प्रकट हो गई. वैज्ञानिक कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, आपने सुना? बिग बैंग थ्योरी मतलब एक बड़ा धमाका हुआ, और जब धुआं हटा तो सारा पर्वत नदियां सुंदर सुंदर पेड़ सब प्रकट हो गए. ये वैज्ञानिकों का ज्ञान है. हमसे एक बार किसी ने पूछा कि आपको आपको क्या लगता है, बिग बैंग थ्योरी सही है या नहीं? हमने कहा अभी टेस्ट कर लो, एक बम लेकर आओ यहां पे लगाओ, धड़ाम आवाज होगी, और अगर उसके बाद एक बड़ा सुंदर बिल्डिंग प्रकट हो जाए तो मान लेना कि सब कुछ बिग बैंग से हुआ है. बिग बैंग से तो केवल ध्वंस होता है, नाश होता है. बिग बैंग से कहां क्रिएशन होती है? आपने देखिए कहीं कि जब बम लगा के कुछ उड़ाया जाए और जब धुआं हटे और आप देखो, तो किसी को अगर घर बनाना हो क्यों इतनी मेहनत करता है कई महीनों तक, है ना? गड्ढा खोदता है, उसकी फाउंडेशन लगाता है, फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या उसमें बिल्डिंग बनाता है, कई महीनों कभी कभी साल लग जाते हैं. कोई जरूरत नहीं है, बम लेकर आना है, राइट? आपने अर्जा में 3 गुंठा जमीन खरीदी अपना घर बनाने के लिए, तो क्यों कॉन्ट्रैक्टर को इतना सब? एक बम लेकर आना, उधर रखना है और भगवान का नाम लेना है और बम फोड़ देना है, और बम फूटेगा जोर से, बिग बैंग धड़ाम, सब धुआं धुआं धुआं, फिर मिट्टी हटेगी और आप देखोगे 3 बेडरूम हॉल किचन का घर प्रकट हो गया. बिग बैंग थ्योरी. तो इसीलिए जब इतनी सा छोटी सी छोटी चीजों को बनाने के लिए कोई चाहिए, तो क्या इतने सब चीजों को बनाने वाला कोई नहीं चाहिए? तो किसने बनाया? भगवान ने, क्योंकि किसी व्यक्ति ने तो बनाया नहीं है. तीसरा प्रमाण, हम लोग जब अंतरिक्ष में देखते हैं, एक सैटेलाइट छोड़ना होता है हमें. अभी भारत में एक सैटेलाइट छोड़ा है थोड़े समय पहले. तो अगर हमें एक सैटेलाइट छोड़ना पड़ता है तो क्या क्या करना पड़ता है आप जानते हैं? पूरा एक नियंत्रण कक्ष लगता है एक छोटा सा सैटेलाइट छोड़ने के लिए. 24 घंटे लोगों को उसमें काम करना पड़ता है, उसकी उसके मूवमेंट्स को देखना पड़ता है, वे कहां गया कैसे हुआ, और उसके सारे फिर इंफॉर्मेशन लेते हैं. बहुत सा काम लगता है उसमें. अब आप बताइए कि एक छोटी सैटेलाइट के लिए इतना लगता है, तो जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है पृथ्वी, और पृथ्वी के मास अर्थात पृथ्वी का जो वजन है वो भी इतना सारा है, और वो आराम से सूर्य के चारों ओर घूम रही है, चक्कर लगा रही है. और ये जो पृथ्वी है ये ऐसे बहुत सारे और ग्रह घूम रहे हैं. हमारा जो यूनिवर्स जिसको साइंटिस्ट मिल्की वे कहते हैं, सुना आपने मिल्की वे? इसको मिल्की वे कहते हैं. तो इसमें इतनी सारी पृथ्वी जैसे बहुत सारे पृथ्वी का छोटा सा प्लैनेट है, बहुत छोटा, उससे कई बड़े बड़े प्लैनेट घूम रहे हैं इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में. तो इतने सारे जो घूम रहे हैं, ऐसे कई अर्थात ऐसे कई ब्रह्मांड हैं जो हमारे साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाला मिल्की वे, जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं. ऐसे कई यूनिवर्सेस हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस. तो ये सारे घूम रहे हैं कैसे? अपने आप, कोई उनको बनाने वाला नहीं, कोई चलाने वाला नहीं. जब एक सैटेलाइट को चलाने के लिए आपको नियंत्रण करना पड़ता है, तो इतने सारे ग्रहों को, पृथ्वी को चलाने वाला कोई नहीं है, कोई भी नियंत्रण नहीं कर रहा, अपने आप चल रही है, लोग कहते हैं ऐसा। तो कौन कर रहा है? भगवान। आपको उदाहरण देते हैं, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, आप लोग जानते हैं कौन है? हाँ हाँ, पीछे फल देखकर आपको पता चल गया होगा, सर आइज़क न्यूटन। ये थोड़ा घूम गया है ना, इसको ठीक करेंगे स्क्रीन। वाई इज़ इट बेंट? हाँ तो स्ट्रेट करो उसको। कल तो ठीक था ना, सो के लीव इट। सर आइज़क न्यूटन इनके एक फ्रेंड थे, तो एक समय सुबह के समय वो उनसे मिलने आए, तो उन्होंने देखा कि उसकी टेबल पर एक सोलर सिस्टम का मॉडल रखा, वर्किंग मॉडल। सोलर सिस्टम जानते हैं आप लोग, सूर्य है, उसके अराउंड जो सारे ग्रह घूमते हैं, तो उसका एक वर्किंग मॉडल, मतलब घूमने वाला, सारे ग्रह घूम रहे थे उसके चारों ओर। तो उसके फ्रेंड ने देखा तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने न्यूटन से पूछा कि अरे वाह बहुत बढ़िया है, किसने बनाया? तो न्यूटन ने कहा क्या बताऊं, रात को मैं सोया, कुछ भी नहीं था, सुबह उठा तो अचानक सब प्रकट हो गया, तो ये अपने आप आ गया। तो उसके मित्र ने कहा क्यों मजाक करते हो, अरे इतना अच्छा वर्किंग मॉडल ये अपने आप कैसे आ सकता है, कोई तो बनाएगा इसको, बिना बनाए तो नहीं हो सकता। तो जो उनके मित्र थे वो भी वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने कहा क्यों, आप लोग कहते हो ना कि ये जो सारा ब्रह्मांड है, ये ग्रह इत्यादि, ये अपने आप आए हैं, कोई इसको चलाने वाला नहीं है। तो जब इतने सारे बड़े बड़े ब्रह्मांड को कोई चलाने वाला नहीं, अपने आप प्रकट हो गए, तो फिर ये वर्किंग मॉडल क्यों नहीं प्रकट हो सकता? नहीं नहीं नहीं, ये सत्य नहीं। तो बोले इसी तरह जब ये छोटा सा वर्किंग मॉडल बिना किसी के बनाए नहीं बन सकता, तो ये सारा जो जगत है ये कैसे बिना किसी के बनाए बन सकता है? तो न्यूटन जो थे वो भगवान के भक्त थे, भगवान को मानते थे। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं उनमें बहुत नियम है, कभी क्रैश नहीं होते हैं, है ना? आपने सुना कभी कि ऊपर प्लैनेट्स क्रैश हो गए एक दूसरे से, रोज एक्सीडेंट हो रहा है, यहां से पुलिस को जाना पड़ता है रिश्वत खाने के लिए? कभी सुना नहीं है, राइट? कुछ नहीं होता, कोई प्लैनेट क्रैश नहीं, तो बहुत अच्छे नियम ऑर्डर वहां पर चल रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोग भगवान के होने की जान सकते हैं कि जब हम प्रकृति में अपने आसपास जीवों को देखते, प्राणियों को, पशुओं को देखते हैं, उनमें बहुत अच्छा ऑर्डर है, बड़ा नियम है। कैसे? अब देखिए जिराफ है, इसका गला बड़ा लंबा होता है, चलने के लिए ठीक रहता है, उसको सब कुछ सुविधा दी गई है ताकि वो उस हिसाब से चल सके। ये छोटा सा पंछी, इसके ऊपर रिसर्च की गई थी, छोटी सी चिड़िया के ऊपर, इसका वजन कितना होता है जानते हैं? 3 ग्राम, 3 ग्राम की होती है। लेकिन जब वो माइग्रेट करती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो 1100 माइल एक टाइम पे उड़ती है, एक टाइम पर 1100 माइल। आप सोचिए 3 ग्राम की चिड़िया 1100 माइल चली जाती है ट्रैवल, एक जगह से दूसरी जगह, और कितनी बार उसको पंख फड़फड़ाना पड़ता होगा उसमें, तो ये सब वो कर लेती है। तो किसने दे दी ये शक्ति? और एक बहुत सुंदर ऊंट, आप जानते हैं ऊंट की जो आईलिड होती है, आईलिड मतलब ये जो हम लोग ढकते हैं ना आंखों को, उसकी ट्रांसपेरेंट होती है, आईलिड ट्रांसपेरेंट होती है ताकि जब रेगिस्तान में रेत चले तो वो देख सके, वो बंद हो जाती है, अंदर नहीं जाती है, लेकिन देख सकता, आईलिड ट्रांसपेरेंट होती है। आपने कभी सुना है ये? अगली बार ऊंट को देखे तो ध्यान से उसके मुंह के पास जाके उसको बोलिएगा जरा आंखें बंद करो, देखना चाहता तुम्हारी आईलिड। तो भगवान ने बनाई है ताकि वो रेगिस्तान में, और ये कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, एक ही बार में कई लीटर देर पानी पी लेता है, उसके बाद कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता, ऐसे कोई प्राणी नहीं। इसलिए रेगिस्तान में रहना है तो वहां के लिए बनाया गया है इसको। चिड़िया को उड़ना है तो उसको वैसे बनाया। अब ऊंट उड़ नहीं सकता, ऊंट को उड़ने की शक्ति नहीं दी कि वो रेगिस्तान आया तो उड़ के चला जाए 1000 माइल, नहीं, उसको वो चलता है तो उसको वैसे बनाया है। तो ये सब किसने सोचा? किसी का तो दिमाग लगेगा ना कि भाई यहां पर उसको चाहिए, उसको ऐसा बनाओ, रेगिस्तान में वो चलेगा, उसको ऐसे बनाओ। तो किसने सोचा? भगवान ने। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हमारा जो मस्तिष्क है, इसके ऊपर रिसर्च की गई और कहा गया कि इसके अंदर ऐसा इतना हमारा मस्तिष्क की शक्ति है मानो कई कंप्यूटर एक साथ फिट हुए हों। पर जितनी कई कंप्यूटर्स की शक्ति होगी उससे कहीं ज्यादा हमारे ब्रेन की शक्ति, क्योंकि कंप्यूटर बनाता कौन है? मनुष्य का ब्रेन ही तो बनाता है ना। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है ये कई कई कंप्यूटरों से ज्यादा शक्तिशाली है। तो किसने बनाया ये? एक कंप्यूटर बनाने के लिए कितना टाइम लगता है हम लोगों को? उसका सब वो क्या क्या चीजें उसमें लगा, उसमें मेमोरी कार्ड लगा और मदरबोर्ड बना और चिप्स बना और ये बना और वो बना। तो एक बनाने के लिए इतना जटिल कंप्यूटर जो हमारे मस्तिष्क में फिट करके रखा है भगवान ने, वैसे ही आ गया, किसी ने तो बनाया होगा। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं कि आसपास, अपने आसपास देखें तो कई लोग बहुत सुंदर होते हैं, कई लोग सुंदर नहीं होते हैं। कई लोग बहुत अमीर होते हैं जिनको खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं होती हैं, लेकिन कई लोग हैं जो थोड़ी सी रोटी के लिए भी तरसते हैं, उनको खाना नहीं मिलता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उन लोगों को। और कई लोगों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, जैसे वो लोग कहते हैं ना बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, तो वो लोग ऐसे पैदा होते हैं। तो कई बच्चे पैदा होते हैं जो आराम से कारों में गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो शायद जीवन भर गाड़ी देख भी नहीं पाते हैं। तो इस तरह से हमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि ये निर्णय कौन लेता, कौन ये निर्णय लेता, कौन कहां पैदा होगा, कैसे होगा, कौन सुंदर होगा। हम लोग तो निर्णय नहीं लेते हैं, हम लोग कुछ चीजों का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। हमारी शक्ति है कुछ चीजों का चुनाव करने की। क्या क्या चीजें हैं वो? उदाहरण के लिए हम लोग अपनी नौकरी चुन सकते हैं कि भाई चलो ये अच्छी नहीं लगी, दूसरी नौकरी ले लेंगे, ये नहीं तो वो ले लेंगे। आप पति पत्नी चुन सकते हैं, आप कार चुन सकते हैं, घर चुन सकते हैं, ऐसी कई चीजें चुन सकते हैं कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये चाहिए, ये कार ये वाली अच्छी नहीं है, दूसरी खरीद ले, या चुन सकते। लेकिन कुछ चीजों का चुनाव आप नहीं कर सकते, जैसे माता पिता। आप में से किसी ने चुनाव किया था माता पिता का? आपको जन्म लेने के पहले एक फॉर्म दिया गया था भरने के लिए कि प्लीज बताइए कैसे माता पिता चाहिए, काले चाहिए, गोरे चाहिए, पीले, लाल, कैसे चाहिए। तो आपको कहा गया था कि आप बता दें, या फिर कहां जन्म लेना चाहते हैं आप बताइए, फॉर्म पर 3 जगह लिख कर दीजिए, इंडिया, अफ्रीका या अमेरिका, आपको एक चॉइस दी जाएगी। कुछ चुनाव नहीं, बस जन्म ले लिया, ले लिया, और हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम लोग चुन नहीं सकते हैं। माता पिता, सौंदर्य, बुद्धि, ये कोई चुन सकता है? कोई नहीं चुन, जैसा मिला बस उसी में रहना पड़ता है। आप सोचिए कितना अच्छा होता कि आपको चॉइस दी जाती, ओके फॉर्म दिया गया है, आप चुनिए, बताइए माता पिता कहां के चाहिए, और उसमें एक छोटा कॉलम होता है उनका बैंक बैलेंस कितना हो, तो आप लोग चुनते हैं। कम से कम 10 करोड़ के ऊपर हो तब तो आनंद आए, नहीं तो फिर क्या फायदा जन्म लेने का, है ना? तब तो हम ऐसे ही रहेंगे बिना जन्म के। तो कुछ चीजें हम लोग चुनाव नहीं कर सकते, कुछ कर सकते। तो कौन कौन निर्णय करता है कि हमारे लिए चुनाव करें, और किस आधार पर? मान लीजिए कोई हमारे लिए चुनता भी है तो उसका आधार क्या है? भगवान चुनते हैं, लेकिन क्या भगवान ऐसे उठा के पटकते हैं जैसे आंख बंद करते हैं, किसी को उठाते हैं, फेंका होगा, कहां गिरा? भारत में, ठीक है इसको फेंका, कहां गिरा? लंदन में, ठीक है उसको फेंका, ऐसे करते हैं? कोई तो आधार बिना आधार के तो भगवान नहीं चुनाव कर सकते, तो किस आधार पर और कौन चुनाव करता है ये हमें जानना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब अचानक होता है या बाय चांस। इस सारे ब्रह्मांड में हम बहुत अच्छी व्यवस्था देखते हैं तो फिर सभी चीजों का नियम होना चाहिए, और नियम का अर्थ है कोई नियम बनाने वाला, तो नियम बनाने वाले भगवान है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन जो बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं या थे, तो वो कहते हैं कि सभी प्राकृतिक नियमों के पीछे एक मस्तिष्क है। जितने भी हम लोग फिजिकल फिनोमेना वी सी इन द वर्ल्ड, देयर इज अ ब्रेन बिहाइंड इट। तो कौन ब्रेन है, कहां, किसका मस्तिष्क है, तो ये स्वीकार करते हैं साइंटिस्ट, क्योंकि उनको नहीं पता किसका मस्तिष्क है, बस है कुछ तो है, कोई तो पावर है। तो आप सोचिए कि जब इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक भी ये स्वीकार करते हैं कि ये सारे प्राकृतिक नियमों के पीछे कोई ना कोई मस्तिष्क है, कोई बड़ी शक्ति है, हाँ वो भगवान को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन ये तो मानते हैं कि कोई मस्तिष्क कोई शक्ति है। और हम लोग कहते हैं वो मस्तिष्क भगवान है। केवल बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति कहते हैं अगर आप गहराई से विचार करें तो आप विज्ञान द्वारा भगवान में विश्वास करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि विज्ञान की सीमा है। जब आप विज्ञान में गहराई से जाते हैं तो आप जान लेते हैं कि एक सीमा के बाद हम कुछ नहीं जान सकते, भगवान ही सब कुछ कर सकते हैं। जैसे हमें एक बार एक सैनिक बता रहे थे, बोलते हम लोग जब युद्ध में नहीं होते हैं तो हम लोग भगवान होगा, ज्यादा कुछ नहीं, बस मंदिर जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते। लेकिन जब हम युद्ध में जाते हैं और अगर एक सैनिक अकेला पड़ जाए, उसकी जितनी बटालियन हो कहीं आगे चली जाए, वो दुश्मन के क्षेत्र में अकेला पड़ जाए, तो उस समय वो केवल भगवान को याद करता है, क्योंकि और कौन बचा सकता है उसे। तो उस समय वो भगवान को याद करता है कि भगवान ही अब रक्षा करें, युद्ध करता है लेकिन भगवान का स्मरण करके करता है। तो इसका अर्थ ये है कि इसी तरह जब हम साइंस में भी विज्ञान में भी गहराई से जाते हैं तो भगवान पर विश्वास होता है। और एक कारण कि भगवान है, भगवान का अस्तित्व है, वो ये है कि हमारे अंदर कुछ चीजों को पाने की आशा होती है या अर्ज होती है, एक इच्छा, जैसे प्यास, हमें प्यास लगती है। प्यास लगने का अर्थ क्या है, कहीं ना कहीं पानी होना चाहिए, है ना। अगर पानी नहीं है तो प्यास नहीं लगती, क्योंकि प्यास है तो उसको बुझाने का साधन भी कहीं ना कहीं होना चाहिए, तभी तो प्यास लगेगी। मान लीजिए भगवान ने पानी बनाया ही नहीं होता तो क्या हमें प्यास लगती। एक बार हमने किसी से पूछा कि मान लीजिए भगवान ने पानी नहीं बनाया होता, बोलते हम तो प्यासे मर जाते। तो प्यासे कैसे मरते, पानी नहीं तो प्यास किसकी लगेगी, है ना। तो पानी होने का अर्थ, प्यास होने का अर्थ है कि पानी होना चाहिए, हमें भूख लगती है, हम लोग खाते हैं, तो भूख है, इसका अर्थ है भूख को समाप्त करने वाला कोई पदार्थ होना चाहिए, भोजन होना चाहिए। ये बड़ा सरल है समझना, प्यास लग रही है पानी होना चाहिए, भूख लग रही है तो कोई भोजन होना चाहिए। इसीलिए हर जीव के अंदर जो आराधना करने की इच्छा है, हम किसी ना किसी की पूजा करना चाहते हैं, भगवान की करते हैं या देवी देवताओं की करते हैं, नहीं तो किसी बड़े शक्तिशाली व्यक्ति की करते हैं, किसी ना किसी की करते हैं। तो ये पूजा करने की इच्छा है, इसका अर्थ है भगवान होने चाहिए, क्योंकि हम आराधना तो भगवान की होती है। तो हम लोग करना चाहते हैं किसी की आराधना, तो ये भी एक प्रमाण है कि भगवान है। अब आइए भगवान की परिभाषा देखते हैं। आज के सत्र में हम लोग केवल ये चर्चा करने वाले हैं कि क्या भगवान है, और भगवान का अस्तित्व है तो उसके क्या प्रमाण हैं। हमने भी थोड़े प्रमाण देखे कि किस तरह से चित्रकार हैं, किस तरह से नियंत्रक किसी को होना चाहिए, किसी को बनाना चाहिए इत्यादि। और अब हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवान की परिभाषा क्या है, किसे किन्हें भगवान कहते हैं। और फिर कल हम लोग ये चर्चा करेंगे कि अगर ये भगवान की परिभाषा है इस परिभाषा में कौन फिट बैठता है, अर्थात भगवान कौन है। तो भगवान की परिभाषा क्या है? सबसे पहली चीज, लोग कहते हैं कि भगवान है नहीं। भगवान की परिभाषा देने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि लोग क्या क्या कहते हैं भगवान के विषय में। तो कोई कहते हैं कि भगवान केवल एक प्रकाश है, बस जैसे यहां आप एक चित्र में देख रहे हैं इस तरफ, केवल प्रकाश, कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भगवान ये प्रकृति है, बस ये पर्वत, ये पेड़, ये नदियां। कुछ लोग कहते हैं भगवान है ही नहीं, भगवान मर गए हैं। जैसे यहां आप देख रहे हैं, एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था नीत्शे, तो उन्होंने चर्च की दीवार पर जाके लिख दिया, गॉड इज डेड, भगवान मर गए हैं। थोड़े समय बाद जो फिलोसोफर थे मर गए, तो लोगों ने उसको बदल दिया। उन्होंने क्या लिखा था? गॉड इज डेड, और नीचे अपना साइन किया था नीत्शे। तो कुछ समय बाद वो मर गए, तो लोगों ने क्या किया, उल्टा कर दिया, नीत्शे इज डेड साइंड बाय गॉड। तो ऐसे लोग हैं जो कुछ कुछ कहते भगवान मर गए। जैसे हिरण्यकश्यप जब हिरण्याक्ष का वध हुआ उसके भाई का, तो उसको पता चला विष्णु ने मारा है, वराहदेव ने मारा था। तो ढूंढने लगा कहां है विष्णु, कहां है विष्णु, भगवान मिले नहीं। तो उसने कहा कि लगता है मेरे डर से विष्णु उस स्थान को चला गया जहां से कोई वापस नहीं आता, मतलब यमराज के लोक में चला गया, मतलब मर गया। तो ये असुरों का भाव है। तो लोग कहते भगवान मर गए। कभी कभी लोग ऐसे कहते हैं, कुछ कुछ अपनी अपनी फिलॉसफी इस्तेमाल करते हैं। कोई कहते हैं अगर भगवान है तो ठीक है, अपने धाम में होंगे, हम लोग अपने धाम में, हमारा क्या लेना देना भगवान से, उनको अपने घर में आराम से रहने दो, अपने घर में आराम से रहेंगे। या फिर कई लोग कहते हैं कि हाँ हो सकता है भगवान है, लेकिन अगर है भी तो उनकी कोई शक्ति नहीं है, उनको नाम के लिए है, बूढ़े हो गए, पहले थे अभी बूढ़े हो गए। कई कई जगह पर भगवान को बूढ़ा दिखाया जाता है, भगवान बूढ़े हो गए हैं, अभी उनकी शक्ति नहीं रही है। तो ऐसी सारी धारणाएं हैं, या भगवान मर गए हैं, तो ये सत्य नहीं है, ये धारणा सच नहीं है। और लोग ये भी कह देते हैं कि आप ही भगवान हो। कोई मिले हैं आपसे ऐसे? हाँ, कोई नहीं ऐसे, यहां कोई भगवान बैठे हैं? क्षमा करें, हमने पूछा ही नहीं। लोग ऐसे ही कहते हैं, अरे आप मुझे $2,000 दो, 6 महीने में आपको भगवान बना दूंगा। भगवान बना देंगे कोई क्या, भगवान कोई प्लास्टिक की मशीन है जो बना देंगे? भगवान बना नहीं जाता, क्योंकि भगवान कोई पद नहीं है, इसको जान लीजिए। भगवान भगवान है, कोई पद नहीं है कि आज इलेक्शन से वो भगवान हो गए कल वो, ये कोई पद नहीं है। तो इसलिए एक बार हम कहीं पे प्रवचन कर रहे थे, एक ऐसे समाज के लोगों को जिसमें माना जाता है कि हम एक दिन भगवान बन सकते हैं, उन लोगों को पूरा विश्वास है उस बात पे, इसलिए वे लोग बड़े अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, दान देते हैं इत्यादि, ये सोच के कि हम अच्छे कार्य करेंगे तो एक दिन भगवान बन जाएंगे। तो आप सोचिए, ऐसे लोग सारे वही बैठे थे, एक भी अलग नहीं, पूरा उनके समाज। और हमें पता था कि वे लोग ऐसे सोचते हैं, और फिर भी हमने कहा भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि सच तो बोलना है, हम थोड़ी झूठ बोल सकते हैं कि हाँ हाँ बन सकते, कोई बात नहीं बन जाना, अने का भगवान नहीं। और वो लोग इतना उनको दुख हो गया, उनका हृदय टूट गया, कि अरे बचपन से सुनते आए भगवान बनना भगवान बनना, और ये व्यक्ति आके कहते भगवान नहीं बन सकते। तो बहुत प्रश्न हुए उसके बाद। एक लड़के ने हमसे कहा, आप मुझे बताइए हम भगवान क्यों नहीं बन सकते, इतना विश्वास था उसको कि भगवान बन जाएगा एक दिन। तो हमने कहा भगवान बना नहीं जाता, भगवान कोई पोस्ट नहीं है, भगवान भगवान है, व्यक्ति है। आप नहीं बन सकते, आप अपने पिता बन सकते हो क्या? तो उसने कहा नहीं, अपने पिता से संबंध स्थापित कर सकते हो, आप अपने पिता से प्रेम कर सकते हो, लेकिन आप आपके पिता नहीं बन सकते क्योंकि आप हो पिता पिता है। आप कैसे पिता बन सकते हो अपने? तो तब उसको समझना है कि हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हो, मैं अपना पिता तो नहीं बन सकता। मम्मी का आप यही मुझसे प्रश्न कर रहे हो कि मैं अपना पिता क्यों नहीं बन सकता। अरे नहीं बताइए आप कैसे बनोगे? आप कुछ भी बन सकते, अपने पिता बन सकते नहीं बन सकते, अपने आप को जन्म दे सकते नहीं दे सकते। तो इसलिए हमने कहा जब इस जगत में आप देखते हो कि कुछ चीजें नहीं हो सकती, भगवान हमारे परम पिता, तो जैसे आप इस भौतिक जगत में अपने पिता नहीं बन सकते, ऐसे ही परम पिता भी नहीं बना जाता, क्योंकि वो पिता है पहले से। तो उसको समझ में आया कि हाँ ये बात तो है, जो पहले से ही पिता है हम पिता नहीं बन सकते, भगवान पहले से हम नहीं बन सकते, सरल है। लेकिन कई जगहों पर और ज्यादा करके पाश्चात्य देश में उनको सिखाया जाता है कि आप भगवान बन जाओगे एक दिन, क्यों नहीं बन सकते। अभी नैनीताल में हम एक जगह प्रवचन कर रहे थे, यही क्लास चल रही थी, तो उसमें कई अलग अलग देशों के लड़के आकर बैठे हुए थे, वो लोग वहां पढ़ने आते हैं। तो उनमें से एक लड़के ने प्रवचन के बाद आकर कहा बड़ी देर कि मुझे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि हम लोग भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि उसको इतना सिखाया गया था वहां पाश्चात्य जगत में, इतने धूर्त लोग हैं, इतने धोखेबाज लोग हैं, पैसा कमाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। यहां से भी भारत से लोग जाते हैं झूठे बोगस गुरु और जाकर वहां बड़े व्यक्ति हो जाते हैं, क्यों $5,000 दो तुम्हें भगवान बना दूंगा, ये दो तुम्हें भगवान बना दूंगा। तो फिर बनते नहीं है तो पैसे बोलते चिंता मत करो, धीरे धीरे एक दिन अचानक मन फूटेगा, भगवान बन जाओगे। ऐसी धोखे की बात है। तो इसी तरह की कई लोग बातें करते हैं, तो हमें जान लेना चाहिए कि भगवान की सही परिभाषा क्या है। तो अब आप ध्यान से भगवान की परिभाषा सुनिए ताकि आप लोग जान लें कि भगवान है या नहीं, और अगर है तो कौन है, क्या परिभाषा है, और कल हम लोग चर्चा करेंगे भगवान कौन है। तो पहली चीज, वो सभी चीजों के स्रोत होने चाहिए, स्रोत यानी सब कुछ उनसे आना चाहिए। ये पहली योग्यता है भगवान बनने की, या भगवान की बनने की नहीं, भगवान की, कि भगवान सभी चीजों के स्रोत है, सब कुछ उनसे आता है। जैसे यहां आप एक चित्र देख रहे हो, छोटा बच्चा है, वो अपने पिता से आया है, उसका पिता उनके पिता से आया, उनके पिता उनके पिता से आए हैं, यहां पर 4 जनरेशन दिखाई गई है, तो एक दूसरे से आए हैं। लेकिन ऐसे आप पीछे जाते जाओ, आपके पिता उनके पिता उनके पिता उनके पिता उनके पिता, अंत में कहां पर पहुंचोगे? अंत में जहां पहुंचोगे वो भगवान है, यानी उनके पीछे कोई नहीं है, उनका पिता कोई नहीं है, अनादि राज, जिनका आदि नहीं, जिन जो कहीं से आए नहीं, तो उनको भगवान कहते हैं। तो सभी के स्रोत हैं, अर्थात सब कुछ उनसे आता है, ये पहला लक्षण है। दूसरा, वो परम स्वामी है। परम स्वामी मतलब, ये याद रखिएगा आप लोग, भगवान के परिभाषा पहला है परम स्रोत है सभी चीजों के, और दूसरे सबके स्वामी है, परम स्वामी, अर्थात उनसे बड़े स्वामी कोई नहीं है, मालिक कोई नहीं है। जैसे एक बार अकबर बीरबल की एक कथा आपको सुना है, एक बार दरबार लगा हुआ था, अकबर का गुणगान हो रहा था और अकबर को बड़ा पसंद आ रहा था, सारे मंत्री बादशाह जहांपना आप तो ये हैं, आप ऐसे हैं, बहुत आनंद, अच्छा लगता है ना, कोई हमारे भी अगर प्रशंसा करे तो बड़ा अच्छा लगता है, मालूम है झूठ है लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। कोई आगे कहता प्रभु जी आप क्या गाते हो, बढ़िया है, इसको एक लड्डू एक्स्ट्रा देना है क्योंकि इसने मेरा गुणगान कर दिया है ना। कोई आके कहते प्रभु जी आप क्या जप करते हो, बहुत अच्छी भक्ति है आपकी, 2 लड्डू दे दो इसको। तो जहां पर ना सुन रहे हैं अंदर बैठ कर सब गुणगान, देखा बीरबल गुणगान नहीं कर रहा था, बीरबल चुप बैठा हुआ था ऐसे। तो बादशाह ने अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम क्यों नहीं गुणगान कर रहे हो, क्या तुम मेरे अंदर कोई अच्छी चीज नहीं देखते? तो बीरबल ने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे, आपके अंदर अच्छी चीज नहीं, आप तो बहुत महान है, बहुत महान है, इतने महान है कि आप भगवान से भी बड़े हैं। तो अकबर ने कहे तो ज्यादा खत्म हो गया। ठीक है, तो अकबर को लगा ये तो मेरी टांग खींच रहा है, ये तो कोई गुणगान में, अभी जैसे किसी कोई गुणगान करेगा, अरे आप तो भगवान से महान है, मतलब खींच रहा है नीचे। तो अकबर को गुस्सा आ गया। अकबर ने बीरबल से कहा कि अगर तुमने इस बात को जो तुमने कही है साबित नहीं किया, तुम्हारा गला काट दूंगा। और राजा लोग थे भी ऐसे संकी हुआ करते थे पहले, कि बात बात से गला कटवा देते थे, और उनको क्या था, ताली बजाई, ले जाओ गला काट दो, गला काट दिया, खत्म। राजा की शक्ति बहुत होती थी पहले, तो कहा कि देखो इस बात को साबित करो। तो बीरबल ने कहा बड़े आराम से साबित कर दो, मैंने जो कहा वो सत्य है, आप भगवान से भी महान है, तो बताओ कैसे। उन्होंने कहा आप वो काम कर सकते हैं जो भगवान नहीं कर सकते, तो आप भगवान से श्रेष्ठ हो। बोले ऐसा कौन सा काम है जो मैं कर सकता भगवान नहीं कर सकता। बोले आप मुझे पहले ये बात बताइए कि अगर मैं आपको वो काम बता दूं जो आप कर सकते हैं भगवान नहीं कर सकते, तो आप बात मानेंगे कि आप ना? बोला ठीक है मैं मानूंगा, मुझे बताओ ऐसा कौन सा काम है, क्योंकि ऐसे कौन सा काम हो सकता है। भाई मैं राज्य कर रहा हूं, भगवान भी राज्य कर सकते हैं, मैं किसी को दंड दे रहा हूं, भगवान दंड दे सकते हैं, मैं पानी पी रहा हूं, भगवान भी पानी पी सकते, कौन सी बड़ी बात, तो ऐसा कौन सा काम है। तो बीरबल ने कहा कि जहातना, आप किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से उठाकर बाहर फेंक सकते हैं, भगवान नहीं कर सकते। सोचे क्या कह रहे हैं। बीरबल ने कहा बता, मैं गलत हूं तो बता। तो बोले समझाओ, समझ नहीं आया कि मैं किसी को अपने राज्य को उठाकर बाहर फेंक सकता हूं, भगवान भी फेंक सकते। बोले नहीं, आप किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य के बाहर उठाकर फेंक सकते हैं, भगवान नहीं फेंक सकते। क्यों? तो उसने बताया बीरबल ने कि भगवान कहां फेंकेंगे, भगवान को अपने राज्य से उठाकर किसी को बाहर फेंकना है तो कहां फेंकेंगे, सब कुछ तो उन्हीं का है ना, फेंकेंगे कहां। अर्थात दूसरे शब्दों में अकबर को समझा रहे थे कि आपकी सीमा इतनी सी है, आपका राज्य है, आप किसी को उठाकर बाहर फेंक दोगे, भगवान कहां फेंकेंगे, जहां फेंकेंगे वो उनका ही राज्य है, तो अपने राज्य से बाहर नहीं फेंक सकते किसी को, क्योंकि सारी भूमि उनकी है। दूसरी दृष्टि में बीरबल अकबर को समझा रहे थे कि आपके पास थोड़ी सी, भगवान सब भूमि के स्वामी, परम स्वामी, सारी भूमि उनकी है, तो इस तरह हमें जानना चाहिए कि सब कुछ भगवान का है, और परम भोक्ता, भगवान को परम भोक्ता कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण के लिए, एक रेस्टोरेंट होता है, होटल होता है, होटल में जो काम करते हैं वो लोग भी एंजॉय करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए पूरे होटल में एसी लगा है, तो जो होटल में काम करने वाला है उसको भी तो एसी मिलता ही है ना, कि नहीं मिलता, कि उसको कुछ कहा जाता है तुम्हें एसी यूज नहीं, वो क्या है, उसको तो मिलना ही मिलना है ना। लेकिन वो आश्रित है किस पर, परम नहीं है, मालिक मेन है, तो एक हो गया मेन भोक्ता, एक हो गया डिपेंडेंट आश्रित भोक्ता। तो मालिक जो है वो अलग है, वो होटल का मालिक कुछ भी कर सकता है, ये लोग भी भोग कर रहे हैं। जैसे एक ड्राइवर, उदाहरण के लिए, अब मान लीजिए गाड़ी है, अब गाड़ी में एसी लगा है, सीट्स बड़ी अच्छी हैं, म्यूजिक चल रहा है, गाने लगे हुए बड़े अच्छे, तो अब मान लीजिए जो मालिक है वो पीछे बैठकर बच्चे बैठा हुआ, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो एंजॉय कौन कर रहा है, दोनों कर रहे हैं ना। मालिक थोड़ी बोलेगा कि एसी चालू है, तुम कंबल ओढ़ो, तुम नहीं हो, तुम्हें एसी नहीं, तुम मैटर हो, तुम्हें एसी नहीं देखना, या फिर गाना लगाया तो उसने तुम कान में रुई डालो, वो भी गाना एंजॉय करता है, लेकिन वो मालिक नहीं है। तो इसी तरह हम लोग जो भगवान की चीजों को एंजॉय करते हैं, हम लोग मालिक नहीं है, हम लोग परम भोक्ता नहीं है। जैसे जो गाड़ी का मालिक है वो परम भोक्ता, वो गाड़ी को कैसे भी भोग कर सकता है, लेकिन ड्राइवर भी करता है, लेकिन मालिक के अनुसार। अगर मालिक कह दे एसी बंद करो, तो ड्राइवर कह सकते हो गाड़ी नहीं चलाऊंगा अगर एसी बंद कराया था, उसको एसी बंद करना ही पड़ेगा, है ना। अगर वो मालिक कह दे गाना बंद करो, सीडी ऑफ करो जो चल रहा है, तो उसको ऑफ करना पड़ेगा, तो इसके लिए वो आश्रित है, वो भी भोग करता है लेकिन मालिक के अनुसार। इसी तरह हम लोग भी इस जगत में आश्रित भोगता है, हम लोग भोग करते हैं लेकिन मालिक के अनुसार, और मालिक जो है वो जो चाहे कर सकते हैं, तो वो भगवान है। और परम नियंता, नियंता यानी नियंत्रण करने वाले, सब चीजों को जो नियंत्रण करते हैं वो भगवान है। तो क्या परिभाषा हुई, कौन बताएंगे, हमने क्या क्या चीजें बताई, कोई बता सकते हैं अभी तक भगवान की परिभाषा क्या है? परम स्रोत और परम स्वामी, परम भोक्ता, परम नियंता। और परम मतलब सुप्रीम, उनसे परे कोई नहीं है, वो सबसे बड़े भोक्ता हैं, सबसे बड़े स्वामी हैं, सबसे बड़े स्रोत हैं, सबसे बड़े नियंता है। नियंता मतलब जो सब कंट्रोल करते हैं सारी चीजों को। हम लोग तो अपने शरीर को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत शक्तिशाली हैं, शरीर बुरा हो रहा है, कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोग कोई बहुत सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम लोग नियंता नहीं है, लेकिन भगवान परम नियंता है। तो ये एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा, क्षमा कीजिए श्लोक इंग्लिश में आ गया यहां पे, दूसरी परिभाषा विष्णु पुराण में दी गई है। ये श्लोक पराशर संहिता में भी आता है, वेद व्यास के पिता पराशर मुनि ने भगवान की परिभाषा दी है। ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशस्त्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव सम्मन् भव इतिंगना। तो भगवान किसे कहते हैं, वो बताते हैं कि जिसके पास छह ऐश्वर्य परिपूर्णता में है, छह ऐश्वर्य परिपूर्णता में एक ही समय। जैसे इस जगत में ये जो छह ऐश्वर्य हैं, ये परिपूर्णता में सबके पास नहीं होते और एक साथ नहीं होते। उदाहरण देते हैं आपको, जैसे पहला ऐश्वर्य है, छह ऐश्वर्यों में से पहला ऐश्वर्य है सौंदर्य। तब सौंदर्य सबके पास नहीं होता, लेकिन जिसके पास है उसके पास परिपूर्णता में नहीं होता, कि ऐसा नहीं कि उससे सुंदर कोई और हो ही नहीं सकता। या फिर अगर उसके पास सौंदर्य है तो बाकी ऐश्वर्य नहीं होंगे। तो किसी के पास सौंदर्य होता है परिपूर्णता में नहीं, अगर होता भी तो थोड़े समय के लिए। जैसे कोई बहुत सुंदर है, कितने समय के लिए, कुछ सालों के लिए। जैसे आज से 50 साल पहले कोई फिल्म की हीरोइन रही होंगी जिनके पीछे लोग बड़े पागल होंगे, आज कोई जानते भी नहीं है। आप लोग जानते हैं कोई नाम 50 साल पहले की हीरोइन का? हाँ, पचास साल पहले, 7 साल पहले, कोई नाम याद नहीं ना, कोई भी सोचना पड़ रहा है कौन है, जबरदस्ती सोच रहा है। यार जो आजकल की हीरोइन है उनको भी ऐसे 7 साल बाद जब कोई इस कौन के भक्त प्रवचन दे रहे होंगे और ये प्रश्न पूछेंगे तो किसी को याद नहीं आएगा ऐश्वर्या राय या कोई भी, लोग भी सोचेंगे 7 साल पहले कौन थी। लेकिन आज ऐसे लगता वाह उससे सुंदर कोई और है ही नहीं। कर्नाटक में आई थी, बलराम में एक बहुत बड़ा उत्सव किया था कर्नाटक सरकार ने, और उस समय क्योंकि कर्नाटक से है तो ऐश्वर्या राय को बुलाया गया, तो सब लोग स्टेज के ऊपर बस उसके साथ एक फोटो खिंचाना, सब एक मेरे साथ फोटो, एक मेरे साथ, पता नहीं फोटो खींच के क्या हो जाने वाला, सब लोग खिंचाना चाहते हैं ना, कोई बड़ा व्यक्ति आए तो एक फोटो, फिर इतनी बड़ी करके उसको लगा देते हैं वहां पर, और कोई घर में आता तो देखो मैं जानता हूं उसको, कई सड़क पर मेरी गई फोटो खींच लिया, मुझे मैं जानता हूं साथ में। तो सौंदर्य ये एक ऐश्वर्य, ऐसे छह ऐश्वर्य हैं, इनकी चर्चा करेंगे। तो भगवान दूसरा धन, धन भी एक ऐश्वर्य, सौंदर्य एक ऐश्वर्य है, धन दूसरा ऐश्वर्य है। तो किसी व्यक्ति के पास धन हो सकता है लेकिन परिपूर्णता में नहीं, कि उससे इतना धन है कि किसी के पास नहीं उससे ज्यादा। हर साल एक लिस्ट निकलती है और उसमें हर बार व्यक्ति चेंज हो जाता है जो टॉप पर रहता, क्योंकि फोर्ब्स की लिस्ट निकलती है, टॉप पर्सन ये है, फिर अगले साल दूसरा कोई आ जाता है, अगले साल तीसरा, और फिर भी ऐसा नहीं है कि उसके पास सारा धन है, सभी धन उसके हैं, तो और परिपूर्णता में नहीं है। तीसरा बल, बल है, जैसे बहुत बल होता है तो बल, बहुत सारे लोग बलवान हैं लेकिन सारा बल एक के पास ऐसा नहीं है, परिपूर्ण जैसे बहुत बड़े बॉक्सर थे मोहम्मद मोहम्मद अली, उन्होंने जब अपना एक बार वो टूर्नामेंट जीत गए तो उन्होंने घोषणा की आई एम द ग्रेटेस्ट। बहुत बड़ा उनका न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट आया उनके फोटो के साथ टॉप पे, आई एम द ग्रेटेस्ट, सबसे महान हूं, कोई है ही नहीं। और क्या हुआ, वो आई एम द ग्रेटेस्ट को थोड़ा समय बाद उनको डिजीज हो गया, हाथ हिलने लगे, चाय का कप भी पकड़ नहीं पाते, अभी तो पता नहीं है भी कि नहीं है, चाय का कप भी पकड़ नहीं पाते थे, ऐसे हिलता था। आई एम द ग्रेटेस्ट, क्या ग्रेटेस्ट है, चाय का कप तो उठा नहीं पाते। तो ये है चीज है, तो बल इतना क्या लाभ है ऐसे बल का। और यश बड़े फेमस, आजकल हमारे प्रधानमंत्री बहुत फेमस है, राइट, सारी दुनिया में वो फेमस हो रहे हैं धीरे धीरे धीरे। मैंने सुना ट्विटर में सेकंड उनका नंबर है फॉलो करने के लिए, लोग उनको, अमिताभ बच्चन के बाद दूसरे यही फेमस हुए हैं इंडियन, है ना। तो यश बहुत बड़ा यश होता है लोगों का, तो कई लोग यशस्वी होते हैं लेकिन थोड़े समय के लिए, हो सकता है 20-25 साल पहले कोई यशस्वी था लेकिन आप जानते हैं उसको पॉलिटिक्स में कहां है, कोई नाम ही नहीं सुन रहे। हमें किसी ने बताया थोड़े समय पहले, हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो एक फला फला प्रधानमंत्री का नाम बताया, तुमने कहा अरे वो भी थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे, नाम ही याद नहीं। तो ऐसे हो गया है, तो इसलिए यश। और पांचवा है ज्ञान। ज्ञान लोगों को बहुत ज्ञान होता है लेकिन परिपूर्णता में नहीं, पूरा ज्ञान एक के पास नहीं। और अंतिम है वैराग्य। ऑफकोर्स ये फोटो शायद गलत आ गई यहां पर, वैराग्य लेकिन ठीक है, वैराग्य। सो वैराग्य, तो ये छह चीजें हैं, इनको ऐश्वर्य, छह ऐश्वर्य कहते हैं। तो परिभाषा के अनुसार जो हम लोग पीछे परिभाषा देख रहे थे उसके अनुसार ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशस्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव सम्यक् भगइतिङ्गना। कि भगवान की परिभाषा क्या है, भग मतलब ऐश्वर्य, ये प्रमुख छह ऐश्वर्य जिनकी हमने चर्चा की, सुंदरता, धन, बल, यश, ज्ञान और वैराग्य। तो इनकी चर्चा, तो ये जो छह ऐश्वर्य हैं, ये छह ऐश्वर्य जिस व्यक्ति के पास एक ही समय में सारे ऐश्वर्य परिपूर्णता में हो उसे भगवान कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सुंदर है तो उसके पास धन नहीं होगा, सुंदर है धन भी है तो बल नहीं होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता कि सुंदर भी है बहुत धनवान भी है और बहुत बलवान भी है, या सुंदर भी है धन है तो ज्ञान नहीं होगा, या ज्ञान है तो वैराग्य नहीं होगा, वैराग्य है तो धन नहीं होगा, धन है तो बल नहीं होगा। छह के छह ऐश्वर्य एक साथ नहीं हो सकते। तो इसीलिए ये जो परिभाषा दी गई है छह ऐश्वर्यों की, कि जिस व्यक्ति के पास छह ऐश्वर्य पूर्ण रूप में होते हैं उसे भगवान कहते हैं। तो भगवान की दो परिभाषाएं हमने दी आपको, एक परिभाषा थी कि भगवान परम स्रोत हैं, परम स्वामी हैं, परम भोक्ता हैं और परम नियंता, वेरी गुड। और दूसरी परिभाषा भग शब्द ऐश्वर्य को संबोधित करता है, और भगवान वो हैं जिनके पास छह ऐश्वर्य परिपूर्णता में है। कौन कौन से हैं वो छह ऐश्वर्य, सौंदर्य, धन, बल, यश, ज्ञान, वैराग्य। बहुत अच्छा, तो ये छह ऐश्वर्य जिसके पास है, तो अब ये परिभाषा हो गई भगवान की। तो हमने चर्चा की पहले कि भगवान है और उसका क्या प्रमाण है, कई हमने प्रमाण दिए, और दूसरी चर्चा की कि भगवान है तो उनकी क्या परिभाषा है, तो उनकी दो प्रकार की परिभाषाओं की चर्चा हुई। और अब कल हम लोग चर्चा करेंगे कि इस परिभाषा के अनुसार कौन व्यक्ति भगवान है, क्योंकि ये परिभाषाएं तो शास्त्र से हैं, विष्णु पुराण से हैं, और पहली भी परिभाषा पुराणों से, शास्त्रों से है। तो ऐसे इन परिभाषा के अनुसार कौन व्यक्ति भगवान है इसकी चर्चा करेंगे। और कल का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल हम लोग चर्चा करने वाले हैं पहला विषय भगवान कौन है इनके अनुसार। उसके बाद अगर भगवान एक है तो फिर बाकी सब का क्या होगा, बाकी सब क्या है, और भगवान के अवतार कौन होते हैं, किसे अवतार मानना चाहिए। बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए। हर एक व्यक्ति को भगवान नहीं मान लेना चाहिए। भारत वैसे भी बड़ी उपजाऊ भूमि है, हर गली में भगवान प्रकट हो जाते हैं, इतनी उपजाऊ भूमि है। हाँ, हर समय जहां जाए भगवान प्रकट हो गए। किसी ने पत्थर रख दिया, थोड़ी देर बाद मंदिर बन गया, ग्राम देवता हो गए। बलराम में एक गांव में गए थे पास में, तो वहां पर मंदिर था, प्रवेश किए सामने ही मंदिर था, तो लोगों ने कहा मंदिर दर्शन कीजिए। हम अंदर चले गए तो कुछ भी नहीं, पत्थर था वहां पे, ऐसा पत्थर रखा हुआ था, कोई फोटो नहीं, कोई कुछ। तुमने कहा क्या है, बोले ग्राम देवता है। तुमने कहा ठीक है, हम गांव में कोई बुरे व्यक्ति है, बोले हाँ एक 80 साल का व्यक्ति है। तो उसके पास गए, हमने पूछा भाई ये ग्राम देवता क्या है, कुछ स्टोरी बताओ आप ग्राम देवता की, क्या है ग्राम देवता। बोले मुझे मालूम नहीं। मैं बोला आप 80 साल के हो, आप और कोई है नहीं आपसे बूढ़ा, तो आपको ही नहीं पता ग्राम देवता। बोले नहीं, मेरे पिताजी पूजा कर रहे थे, मैं भी कर रहा, बस चली आ रही है, कुछ पता ही नहीं, कोई स्टोरी नहीं, किसी को पता नहीं, बस ग्राम देवता। तो हमने कह रहे ऐसे कैसे आप मान लेते हो, ना उसमें कुछ है ना कुछ, चलो कुछ तो इतिहास होगी, इन्होंने ये किया वो किया, किसी देवता से संबंधित शास्त्र पुराण कुछ नहीं। लोग ऐसे ही मानते, जैसे आपको एक कहानी सुना, कई बार हम ये कहानी सुना चुके, लेकिन बड़ी अच्छी कहानी है रिचुअल्स के लिए, कि एक बार एक विवाह हो रहा था, शादी उत्तर भारत में। यहां कितने उत्तर भारतीय हैं, कोई है और कोई सारे है। आपको पता है उत्तर भारत में शादी में सबसे महत्वपूर्ण चीजें दो ही होती हैं, आपको लड़का लड़की छोड़ के, वो तो रहेंगे तब तो शादी होगी, उनको छोड़ के दो चीजें शादी में महत्वपूर्ण होती हैं, एक डेकोरेशन और दूसरा खाना, राइट। सारा पैसा उसी पे खर्चा होता है, डेकोरेशन या दबा के डेकोरेशन की जाती है, और खाना तो उफ जीवन में नहीं खाया, उतने डिशेस लग जाते हैं लाइन से। शादी हो रही थी, बारात बारात समझते ना आप लोग, बारात आ रही थी, तो बारात आते ही क्या होता है पता है आपको, सारे लोग पहले खाना खाने जाते हैं, नाच नाच के थक जाते हैं जो भी है, क्योंकि आती लेट है, 7 बजे का टाइम होगा तो 11 बजे आएगी बारात। तो और बारात आती है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खाना होता है, क्योंकि अगर अच्छा खाना नहीं बना तो लड़की को जीवन भर सुनना पड़ता, तेरी शादी में भूखा रहना पड़ा था, है ना। इसलिए मां को बड़ी चिंता होती, खाना बढ़िया हो जाए बस, लड़की को सुनना नहीं पड़े जीवन भर। तो बारात आ रही थी, बारात आ गई अंदर, तो लड़की की मां भागी जाकर देखे सब खाने वाने की व्यवस्था ठीक है कि नहीं, तो टेबल लगी हुई थी, सब लोग चले गए थे देखने के लिए, वहां शौक होता बारात आ रही है तो सब जाके खड़े होकर देखते हैं वहां पर, तो कोई नहीं था, तो टेबल लगी हुई थी, सब डिशेस लगे हुए हैं खुले पड़े, और कॉर्नर पे पहले ही एक बिल्ली बैठी है। अब मां की तो हालत खराब हो गई कि अरे ये बिल्ली, अगर इसे भगाऊंगी और ये सब पे कूदती हुई गई या कुछ गिरा दिया तो कितनी बदनामी होगी, और अब तो आ गए 10 लोग आने वाले अंदर, क्या करना चाहिए, और अगर इसको नहीं भगाऊंगी, बिल्ली बैठी होगी तो लोग देख करे तो बिल्ली तो अपशकुन मानेंगे, कोई खाना नहीं खाएंगे, और खाना नहीं खाया तो बदनामी, बड़ी बदनामी होती है वहां पर, तो अगर खाना खराब हो जाए कुछ हो जाए तो अरे लड़की बेचारी जीवन भर यही सुनती। तो मां ने सोचा कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो धीरे से गई, उसने छोटा सा भगोना लिया, पतीला लिया, धीरे से गई और ढक दिया उसके ऊपर बिल्ली, और बिल्ली बेचारी छोटी थी, उसको कुछ पता नहीं क्या, उसको ढक दिया और तड़ा दिया जोर से, हिले नहीं, और अब वो खड़ी है, क्योंकि छोड़ तो सकती नहीं, छोड़ेगी तो बिल्ली बाहर निकलेगी, अब वो खड़ी है, एक हाथ रखा, अब बाराती आ गए, अब मां का कर्तव्य है स्वागत करना, तो सर आइए 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 आप लोग खाइए खाइए। तो लोग बोले आप नहीं, नहीं आप खाइए, मैं तो इधर ही खड़ी हूं, खाइए खाइए मैं बाद में खाऊंगी, हाथ नहीं हिला रही यहां से, हाथ में गलत, अब बिल्ली दब रहे
रही है, दब रही है, अरे आई आई एक घंटा डेढ़ घंटा चल रहा है, हिल नहीं रही है वहां से, तो लोग भी सोच कितनी अच्छी माँ है, देखो खुद खड़े होकर स्वागत करे, हिल भी नहीं रही है वहां से, वो हिले कहां से, वो तो बिल्ली को दबाए हुए है। तो ऐसे काफी समय हो गया, सब ने खा लिया, सब चले गए, तब ये हटी, तब तक तो बिल्ली मर गई, क्योंकि कितना सांस ही नहीं, कुछ हवा नहीं, छटपटा कर मर गई बिल्ली। तो खैर ये हो गया, जब वो बिल्ली को दबा रही थी तो उस समय और किसी ने नहीं देखा, वो लड़की जिसकी शादी हो रही थी, मां जिसकी थी, उसने अपने खिड़की के कमरे से, अपने कमरे की खिड़की से देखा, वो देख रही थी कि मेरी मां ने बिल्ली को दबा दिया। तो खैर शादी हो गई, सब हो गया, कभी उसने पूछा नहीं अपनी मां से। फिर ऐसा हुआ कि ये जो लड़की जिसकी अब शादी हुई थी, इसकी एक लड़की हुई, और वो लड़की बड़ी हुई, अब वो शादी के लायक हो गई। तो अब जिसकी शादी पहले हुई थी, जिसमें बिल्ली मरी थी, अब उसकी लड़की की शादी होनी है, और तब तक ये जो मां थी जिसने बिल्ली मारी थी, वो मर गई, और कभी भी वो लड़की ने उसको पूछा ही नहीं कि तुमने मेरी शादी में बिल्ली क्यों मारी थी। तो अब मां मर गई, अब कुछ पता नहीं, अब शादी हो रही है। तो अब आप वापस सीन देखिए, रीटेक, वापस से रिप्ले, एक्शन रिप्ले, फिर से वही बारात आ गई, लड़के वाले खाने आ रहे हैं, इस बार बिल्ली नहीं थी, तो सब हो गया, सब लोग खाने की शुरुआत करने वाले हैं, लड़की ने कहा रुक जाओ, सब लोग ने कहा क्या हुआ, तो उसने कहा देखो हमारे जो परिवार के नियम होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, उनको पालन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ जरूर, हमारी जो परंपराएं हैं उनको पालन करना चाहिए, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि देखो जब परंपराएं कब तक चलनी चाहिए, बड़े बूढ़े हों या ना हो, आज मेरी मां नहीं है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि जो उसकी परंपराएं थी वो मैं पालन नहीं करूंगी। तो सबने कहा भाई बताओ क्या परंपरा है, उसने कहा एक बिल्ली को लेकर आओ। तो बिल्ली अभी खाने के बोले बिल्ली लेकर आओ, तो बिल्ली कहीं से ढूंढ के लाई गई, बेचारी को पकड़ कर लाया गया, बोले रखो इधर, एक भगोना ला, एक भगोना ला, उसने उससे बिल्ली को दबाया, हाथ रखा, बोले अब सब लोग खा सकते हैं। तो मैंने कहा ये कौन सा तरीका, बोले ये नियम है, मेरी मां ने परंपरा मैंने खुद देखा था, तो मेरी मां की परंपरा मैं नहीं तोड़ूंगी, मां मर गई लेकिन मैं परंपरा नहीं तोड़ूंगी। तो आप सोचिए पता नहीं उस उन घरों में कितनी बिल्लियां मरी होंगी, और उसके कई जनरेशन बाद किसी ने प्रश्न नहीं किया कि क्यों बिल्ली, बस हमारी परंपरा है, हमें बिल्ली मारनी, अरे कहां की परंपरा, कुछ पता है, कोई इतिहास है। जैसे बलिदान में हम रहते थे तो वहां पर एक नियम था कि जब शादी हो जाती थी लड़का और लड़की की, तो उनको एक मंदिर में जाना था, और एक चिकन होता ना छोटा बच्चा, उसका चूजा बोलते हैं उसको, मुर्गी को, उसको मारना है, उसको लेके पटक कर मारना है उसको। तो क्या क्यों मारना, बस परंपरा, अब किसी ने कभी मार दिया तो कहीं पे परंपरा चल रही है। तो ऐसी कई परंपराएं चलती, रीति रिवाज चलते हैं, लेकिन हमें इन सब से प्रभावित नहीं होना। तो कल हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवान कौन है, अवतार कौन है, किन्हें अवतार मानना चाहिए और किन्हें नहीं मानना चाहिए, और साथ ही साथ एक भगवान है या अनेक भगवान है, ये सारी चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि भगवान का विषय, और भगवान व्यक्ति है या नहीं है, और फिर अगर एक भगवान है तो इतने सारे धर्म क्यों है, तो इनकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं, कल का विषय वैसे बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बहुत सारे अवतार, आजकल झूठे अवतार भी बहुत सारे हैं, तो कल हम लोग पता कर पाएंगे कि किसको अवतार मानना चाहिए किसको नहीं। कोई भी प्रश्न किसी का, या कोई लिख कर देना चाहते हैं, चिट्स हैं, अगर कोई लिख के देना चाहे तो पेपर ले सकते हैं। कहां पर है चिट्स, बाटल रॉक। या ऐसे भी पूछ सकते हैं, कोई बाहर वाले नहीं है, सब अपने ही है। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा किसी के मन में? यस बहुत अच्छा, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। वैराग्य कैसे ऐश्वर्य हो सकता है? क्योंकि साधारणतः हम लोग ऐश्वर्य शब्द को किसी प्रसिद्धि या महानता से जोड़ते हैं, या धन बल इत्यादि से जोड़ते हैं, या यश से। तो धन कोई मान सकता है, यश ज्ञान बल ठीक है, ये सब तो है क्योंकि इससे प्रसिद्धि मिलती। वैराग्य कैसे ऐश्वर्य है? वैराग्य भी एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, क्योंकि वैराग्य आकर्षित करता है। जब व्यक्ति वैरागी हो जाता है, वैराग्य, जैसे बड़े बड़े लोग बहुत सारे धन को त्याग देते हैं, अपने सारे धन को, संपत्ति को, राज्य को त्याग कर वैराग्य ले लेते हैं। अर्थात वैराग्य में आकर्षण करने की शक्ति है, ऐसा आकर्षण जो धन में भी नहीं है, इसलिए लोग धन को त्याग कर वैरागी हो जाते हैं। और इस दृष्टि से, क्योंकि ऐश्वर्य किसे कहा जाता है, वो चीज जो आकर्षित करे। जैसे हमने आपको कुछ चित्र दिखाया, तो आप उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं ना। मान लीजिए ऐश्वर्या राय वहां पर आ जाए, तो क्या 50-60 लोग आएंगे देखने? उसको गेट क्रैश हो जाएगा, बंद करना पड़ेगा, बोले अलाउड नहीं है अंदर। आप कहीं से कूद कर आओगे, पहाड़ से चढ़ कर आओगे, कहीं नदी में से कूद कर, कहीं से भी आओगे ऐश्वर्या राय को देखना, है ना। अगर भगवान की बात हो रही है तो दरवाजे खुले हैं, सब पर्वत ओपन है, कोई नहीं आ रहा। तो हम आकर्षित, ऐश्वर्य मतलब जो आकर्षित करता है, धन। अरे जैसे धीरूभाई अंबानी के पुत्र आ गए, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी आ रहे हैं, अनाउंसमेंट हो जाए तो कितने लोग देखना चाहते हैं। जैसे अभी हम लोग कुछ समय पहले हम्पी गए थे, तो हम्पी में हम लोग ब्रह्म मंदिर के कुछ भक्त गए थे, तो हम लोग जा रहे थे, तो हमें पुलिस वालों ने आगे नहीं जाना, आप थोड़ा रुक जाए यहाँ पे, क्या बात है? तो बोले कोई व्यक्ति आए हुए हैं, बंबई के कोई प्रसिद्ध राजनेता हैं, ऐसे ऐसे आए, तो लोग देखना। हम लोग ने भी देखे है, कौन नाम सुना, अभी तक देखता नहीं, तो सामने ही खड़ा था, पहचानने नहीं आ रहा था। हमें बोले कि यही है क्या? तो किसी ने बोले यही है, यही है, लगता नहीं है। तो कोई ऐसे बड़े व्यक्ति, तो यह ऐश्वर्य का अर्थ है वो जो आकर्षित करे। तो धन आकर्षित करता, बल आकर्षित करता, यश आकर्षित करता, ज्ञान। इसी तरह वैराग्य में भी बहुत आकर्षण है, तो इसलिए उसको भी ऐश्वर्य माना गया। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न। यस, और कोई प्रश्न? यस, एक सेकेंड, एक बच्चा प्रश्न पूछ रहा। विष्णु नहीं कहा, हमने कहा भगवान तक पहुंचेंगे माता में। हम लोग अगर पिता में कृष्ण तक पहुंचेंगे, तो माता में राधा रानी तक पहुंचेंगे, है ना। वैसे शास्त्र में कहा गया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। वही हमारे माता है, वही हमारे पिता है, क्योंकि सब कुछ उनसे आता है, है ना। लेकिन फिर भी आप राधा रानी तक जा सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं। यह सर पीछे जो प्रश्न था, आप चिट्स बांट रहे हैं, कोई पेपर, किसी को पेपर चाहिए तो लिख के दे सकते हैं, आप लोग हाथ उठाइए, पेपर दे देंगे आपको। हाँ जी बोलिए। भगवान का कोई रूप है या नहीं, आप कल तक थोड़ा इंतजार कीजिए, कल ये एक विषय है कि भगवान व्यक्ति है या कोई व्यक्ति नहीं है, तो कल स्पष्ट होगा, क्योंकि हम कल ही ये चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आज जवाब देना सही नहीं होगा, कल तक खाली इंतजार कीजिए। और कोई प्रश्न? हाँ जी, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न। हमने कहा भगवान परम स्रोत हैं और सबके पिता हैं, के शास्त्रों में कहीं यह वर्णन नहीं है कि भगवान के कौन पिता हैं। शास्त्रों में यह वर्णन है कि जब भगवान अवतार लेते हैं, इस पृथ्वी पर आते हैं, तब उनके कोई एक माता पिता होते हैं जिनको वो चुनते हैं। जैसे हमने पहले बताया, हम लोग अपने माता पिता नहीं चुनते, लेकिन भगवान चुनते देवकी और वसुदेव उन्होंने तपस्या की, भगवान ने कहा ठीक है अगले जन्म में मैं तुम्हारा पुत्र बनूं, तो भगवान ने चुना कि अगले जन्म में तुम मेरे माता पिता बनना। तो जब भगवान अवतार लेते हैं तब उनके माता पिता इस जगत में प्रतीत होते हैं, जिनको वही चुनते हैं, वो है नहीं, लेकिन भगवान कहते ठीक है तुम मेरे माता पिता बनना। अब वो माता पिता तो नहीं है, उन्होंने जन्म नहीं दिया, भगवान ही आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो जब पुत्र बनूंगा मतलब तुम मेरे माता पिता हो नहीं, मैं एक ड्रामा करूंगा तुम बन जाना। तो चूज करते हैं, जैसे एक डायरेक्टर होता है वो ड्रामे के कैरेक्टर्स चूज करता है, चलो तुम ये बनो तुम वो बनो, तो ऐसे भगवान चूज करते हैं आप मेरे माता पिता बनना, अगले जन्म में मैं आपका पुत्र बनूंगा। तो जब इस पृथ्वी पर आते हैं लीला करने के लिए तब किसी माता पिता को चुनते हैं, लेकिन मूल अवस्था में भगवान का कोई आदि नहीं है। ब्रह्मा जी इस बात को कहते हैं अनादिर आदिर, ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कोई आदि, जिनका कोई माता पिता नहीं है, क्योंकि अगर उनके माता पिता हो गए तो फिर वो बड़े हो गए भगवान से, है ना, लेकिन भगवान सबके स्रोत है। तो इसकी चर्चा भी कल थोड़ी विस्तार से हो जाएगी। थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी के हैं, कोई लिख कर देना चाहे या बोलकर। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान हमारे पिता हैं, हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भूकंप इत्यादि के द्वारा बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? भगवान हमारे पिता हैं, हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम उनके पास जाते नहीं हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति शेविंग करवा रहा था बार्बर के पास, नाई के पास बैठा, बातचीत चल रही थी। अब नाई के पास बहुत ज्यादा बातें होते हैं, शेविंग करने जाते हैं सारी राजनीति उधर ही हो जाती है। तो उसने शेविंग करते करते बार्बर ने कहा व्यक्ति से, आपको पता है भगवान है ही नहीं? तो बोला अरे ऐसे कैसे? बोला देखो बाहर जाओ पता चलता है, इतनी गरीबी है, लोग मर रहे हैं, बीमारी है, ये देख के ही पता चलता है भगवान नहीं। भगवान होते तो क्या लोग इतने बीमार होते, इतने कष्ट में होते? तो भगवान है नहीं। तो व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाया, शेविंग हो गई, चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया और उसने कहा तुम्हें पता है दुनिया में नाई होते नहीं है, बार्बर नहीं होते। बोलते अरे क्या पागलपन, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने, दुनिया में नाई नहीं होते, ये कैसे कह सकते? बोले देखो बाहर जाओ, कितने लोग हैं जिनकी शेविंग नहीं हुई है, जिन्हें दाढ़ी बढ़ गई है, मूछें बढ़ गई हैं, बाल बढ़ गए हैं, कितने लोग हैं? अगर बार्बर होते तो हर व्यक्ति की शेव हो गई होती। तो बार्बर ने कहा क्या पागलपन है, अरे जब वो व्यक्ति मेरे पास आएगा ही नहीं तो मैं उसकी शेव कैसे करूंगा? तो उसने कहा यही तो मैं समझा रहा हूं, तुम कह रहे हो कि लोगों के पास इतनी गरीबी है, इतने दुख है ही है, अरे वो जब भगवान के पास जाएंगे ही नहीं तो भगवान दुख कैसे दूर करेंगे? तो इसी तरह हम लोग जो बाहर देखते हैं, जो भूकंप आता है इत्यादि, वो ज्यादातर एक प्रकार का दुख है जो हमारे कर्मों से हमें मिलता, आदि दैविक दुख है जो हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिलता है। और जहां तक कर्मों का नियम है भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। कब तक? जब तक हम उनके पास जाकर उनको ये कहते नहीं है कि मेरे कर्म समाप्त करो, जब तक हम भक्ति नहीं करने लगते हैं। तो इसीलिए ये जो बाहर चीजें होती हैं इसका दोष भगवान पर नहीं है, क्योंकि हम लोग भगवान के पास जाते नहीं हैं। जब अगर जाएंगे भगवान के पास, प्रार्थना करेंगे, तब तो भगवान हमारे कष्टों को दूर करेंगे। हमारे पिता हैं ठीक है, लेकिन हम उनको छोड़कर आ गए। कल हमने उदाहरण दिया था, कल थे यहां पर? कल नहीं थे। कल हमने उदाहरण दिया था कि हम लोग उस पुत्र की तरह हैं जो बहुत बड़े व्यक्ति का बेटा है, लेकिन उसको छोड़कर आ गया है, यहां पर रो रहा है इस जगत में। तो क्योंकि वो छोड़कर आ गया है, इसीलिए जो पिता का संरक्षण उसने छोड़ दिया है, इसीलिए पिता का संरक्षण नहीं मिल रहा। पिता क्या करे, पिता तो तैयार है संरक्षण देने के लिए, लेकिन हम उन्हें छोड़कर यहां चले आए हैं। तो इसीलिए जब हम फिर से भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान को ये दिखलाते हैं कि हमें आपके संरक्षण की आवश्यकता है, तो निश्चित संरक्षण मिलता है। और दूसरी बात, जब भगवान संरक्षण करते हैं तो केवल शरीर का नहीं चेतना का संरक्षण करते हैं। हो सकता है शरीर मर जाए लेकिन चेतना को भगवान बनाए रखते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक कर्मों का नियम हम लोग परसों चर्चा कर, परसों नहीं कल रविवार है, मंगलवार को हम लोग चर्चा करने वाले हैं, नहीं सॉरी बुधवार को हम लोग कर्मों का नियम चर्चा करने वाले हैं, तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, यस। बहुत अच्छा, यस। इसको हम लोग, हमने इसीलिए कहा जब कर्मों की बात करेंगे तो इसमें करेंगे, अलग अलग प्रकार के कर्म होते हैं जिनमें से एक कर्म होता है संयुक्त कर्म। संयुक्त कर्म मतलब ऐसे सारे लोग जिनके कर्म एक प्रकार के हैं उनको एक जगह लाकर एक प्रकार की मृत्यु दी जाती है, जैसे प्लेन क्रैश हो जाता है, सब एक ही तरह मरते हैं, तो कोई ऐसे ये नहीं कि किसी को दूसरे प्रकार या जो भी है, तो इसको संयुक्त कर्म कहते हैं। पांचवें दिन इसकी चर्चा करेंगे विस्तार से। Shri Krishna is always with Srimati Radharani, why not with Devi Rukmini, though she is Krishna's wife? There is an eternal world. Should I speak in English? Because somebody has asked in English. There is an eternal world, eternal spiritual world. And in that eternal spiritual world, Radha and Krishna are always together. But when they come to this material world, just to perform the pastimes, they are separated. For example, if there is husband and wife who are playing in a drama, and on the stage, the husband and wife are separated, that doesn't mean that they are actually separated. It is only for the drama. But actually, Radha and Krishna are eternally associated in spiritual world, and that is why there is nothing wrong when we worship Radha and Krishna. And as far as your question that he should be with Rukmini, yes, in some of the temple he is with Rukmini, Rukmini Dwarkadhish, but when it is in the mood of Vrindavan, he is always with Radharani. And your question that Rukmini was married, she was wife, whereas Radha was not, is a wrong question. The first marriage of Krishna that happened as per Garga Samhita and Brahma Vaivarta Puran was of Sri Krishna and Srimati Radharani. She is the first wife. She was married to Sri Krishna. That is, there is a proof, there is a pramana in the shastras. So she is married, and Rukmini was married later when he went to Dwarka. But he married Radharani when he was in Vrindavan. So that is given in the Puranas. But as far as your question why they are worshipped together, because they are eternally associated in spiritual world, here they only perform the drama. क्वेश्चन है, लोग कहते हैं कि मैं भगवान या धर्म को नहीं मानता, पर मैंने किसी का आज तक बुरा नहीं किया और हमेशा हंसता हंसाता रहता हूं, पर मैं कभी मंदिर नहीं गया तथा कभी पूजा पाठ नहीं की, तो मैं क्या हूं, धर्म को मानने वाला या अधर्मी? केवल अच्छे कार्य करना, ईमानदारी का जीवन जीना, ये धर्म का प्रमाण नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई चोर है और वो चोर बहुत से चोरी करके लाए हैं और चोरी करके उन्होंने सब कुछ फैला दिया और कहा कि भाई ये सब ईमानदारी से बांटना चाहिए। क्या ईमानदारी है? सामान तो दूसरे का है, तुम तो चोर हो और बांट रहे हो दूसरे का सामान और खुद को बड़े ईमानदार कह रहे हो, ये कहां की ईमानदारी है? तो इसी तरह जब हम इस जगत में रहते हैं, भगवान की सारी चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे ये हवा, ये जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया है, हमारा प्रश्न उनसे है, ये कहते हैं कि मैं धर्मी हूं या अधर्मी हूं, तो ये हवा जो आप ले रहे हैं उसका कितना टैक्स देते हैं आप बताइए? सरकार से आप कोई चीज लेते हैं, बत्ती लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, उसका टैक्स देते हैं। आप भगवान से जीवन भर हर क्षण सांस लेने के लिए हवा ले रहे हैं, कौन सा टैक्स दिया है आपने भगवान को? और अगर नहीं दिया तो आप चोर हैं, सही है ना? चुरा रहे हैं भगवान की संपत्ति। ये भूमि किसकी है? भगवान की है। हवा, पानी, अन्न किसका है? भगवान का है। हम सब इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम भगवान को धन्यवाद तक देने के लिए तैयार नहीं है, तो हम लोग चोर हैं। एक बार प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद जी भी एक बार कलकत्ता में घूम रहे थे अपने घर की छत पर, सड़क पर, सॉरी छत पर, तो उनसे भक्त कुछ मिलाने के लाए। एक बहुत बड़ा व्यक्ति था जो कांच का बिजनेस करता था, तो भक्तों ने मिलाया, प्रभुपाद ये है, ये कांच का बिजनेस करते हैं। तो प्रभुपाद ने उनकी तरफ देखा, पूछे कांच का बिजनेस कैसे करते हो, कांच के लिए रॉ मटेरियल कहां से लाते हो, तो उन्होंने ये और क्या यूज करते हो, उन्होंने रेत, बोला रेत यूज करते हो, बोला हाँ, बोले तुम चोर हो। वो सारे लोग घबरा गए, इतने बड़े व्यक्ति को मिलाने के लिए लाए, प्रभुपाद कह रहे चोर है, बोले तुम चोर हो, रेत लेते हो भगवान की, भगवान को क्या देते हो? तो भक्तों ने धीरे से प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद जी हमें थोड़ा डोनेशन देते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, छोटा चोर है लेकिन चोर तो है क्योंकि भगवान की संपत्ति लेता है। तो आप सोचिए, हम लोग भगवान से हवा ले रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, ये हर महीने बिल भेज देता है, और कहते 10 तारीख तक भरो नहीं तो फाइनल डिस्कनेक्शन पूरा काट देंगे, राइट? आजकल धमकी देते हैं बोलो। अब बताइए, अगर भगवान ऐसे सोच ले कि ये व्यक्ति मेरी पूजा नहीं करता, भक्ति नहीं करता, नाम नहीं लेता, इसको सांस लेने का बिल भेज देता हूं मैं, हवा तो मेरी है, तो भगवान बिल भेज दें कि आप दिन में 10,000 सांस लेते हैं, एक सांस का ज्यादा नहीं, 1 रुपया दिन का, 10,000 साल, महीने का 3,00,000 रुपया, 10 तारीख तक दो, नहीं तो डिस्कनेक्शन भैया, कभी भगवान ने आज तक बिल। तो हमें ये सोचना, तो ये हमारी चोरों की ईमानदारी नहीं होनी चाहिए कि मैं तो बात, जो भी चोरी का माल है उसको ईमानदारी से बांटना। हमारी ईमानदारी होनी चाहिए कि ये सामान मुझे भगवान ने दिया, हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि हवा पानी के बिना हम जी नहीं सकते। हम किसी से तन उधार लेते हैं, उसको वापस करते टाइम धन्यवाद देते हैं, इसी तरह हम भगवान से ऐसी चीजें ले रहे हैं जिनके बिना जी नहीं सकते। तो जब जी नहीं सकते, लाइफ सेविंग थिंग्स भगवान दे रहे हैं, तो कम से कम भक्ति करके, नाम लेके, मंदिर जाके उनको धन्यवाद तो दे सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो उसमें क्या गलती है? तो ये हमारा मानना। क्षमा कीजिएगा अगर किसी को ज्यादा दुख हुआ हो, लेकिन है तो सत्य ठीक है। कोई प्रश्न किसी का, कोई मन में जिज्ञासा? समय काफी हो रहा है, ठीक है। तो 5-10 मिनट कीर्तन करेंगे, 5 मिनट, ताकि आप लोग थोड़े फ्रेश हो जाए, आप सब थके थके लग रहे हो। कल कृपया समय पर आइए, विषय थोड़ा सा लंबा भी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, विशेष करके अवतार, किसको अवतार मानना चाहिए, कौन कौन से अवतार हैं भगवान के, और साथ ही साथ भगवान कौन है, वो आते क्यों हैं, जब भगवान नीचे आते हैं तो क्यों आते, क्या उद्देश्य है, हमें का ऐसे घूमने फिरने चले आते हैं या कोई उद्देश्य होता है, तो कल चर्चा करेंगे। और बोगस अवतारों की भी चर्चा कल होगी, झूठे अवतार, ठीक है। हरे कृष्ण, तभी थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, भगवान का स्मरण। कृपया से खड़े हो जाए, और आप सबने कल बहुत अच्छी तरह भाग लिया था कीर्तन में, बहुत उत्साह आया हमें देखकर, आपका उत्साह, और आज उससे भी ज्यादा उत्साह से कीर्तन करेंगे। किसी ने बाहर अटेंडेंस नहीं लगाई हो तो कृपया जाने के समय लगा दें, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि अगर जो लोग पूरे छह दिन आ रहे हैं उनके लिए सर्टिफिकेट्स होंगे और साथ ही साथ नोट्स भी उनको आखिरी दिन दिए जाएंगे, तो इसीलिए आप में से कोई रह नहीं जाए तो जो पूरे छह दिन आएंगे तो उनके लिए ये नोट्स और सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप लोग कृपया करके बाहर जाते समय अगर आपने नहीं अपने लगाई है लेते भी क्या जरूरत है आवश्यकता है अगर आपने नहीं लगाई है तो कृपया आप अपनी अटेंडेंस लगा लीजिए और कल समय पर आइएगा। और कोई सूचना देना है? कोई सूचना और है? बस और शायद कल आप लोगों को जो सूचनाएं दी गई थी दो तीन सूचना थी, समय पर आइए। कोई अगर भगवान का प्रसाद स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो हरि गुरु प्रभु से या दिनेश प्रभु से मिल सकते हैं। और अभी और एक सूचना, थोड़ा उत्साह से कीर्तन करना है, ठीक है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
दोनों हाथों की तालियां सुनाई नहीं दे रहा।
कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा जय गोविंद जय गोपाल।
बहुत धीरे बोल रहे हैं आप लोग।
जय गोविंद जय गोपाल, जय गोविंद जय गोपाल,
जय गोविंद जय गोपा 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे राम राघव राम राघव रक्षा कृष्ण केशव कृष्ण केशव कारिण कृष्ण 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 हे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
धन्यवाद आप सबका। बड़े अच्छी तरह से आपने इसमें भाग लिया और अभी प्रसन्न
लेना है आप सबको। आप सब थक भी गए हैं, बहुत भूख भी लगी होगी आप लोगों को, और हम लोग कीर्तन एंड करते समय केवल प्रभुपाद का गुणगान करते हैं। तो एक दो मिनट जोर से प्रभुपाद का गुणगान करेंगे और फिर इस कीर्तन को समाप्त करेंगे।
जय प्रभु सदा, जय प्रभु सदा, प्रभु सदा सुन प्रभु सदा, जय प्रभु सदा। जय प्रभु सदा, जय प्रभु सदा, प्रभु सदा सुन प्रभु सदा। हरि बोल मिताय गौर हरि बोल।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, शिल प्रभुपाद की, मिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, कल मिलेंगे आपसे। हरे कृष्ण। कल वैसे रविवार है, अगर आप लोग दोपहर को भी मंदिर आना चाहें, मंदिर में दोपहर को कार्यक्रम हो।